नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान श्री राम, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री हनुमान जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं उनकी गाथा जो पूर्व से ही रामायण में कही गई है कहने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुविधि गावहिं सुनहि संत, भगवान की कथाएं अनंत हैं और बहुत प्रकार से महात्माओं ने, संतों ने उसका गान किया है, उसका कई प्रकार से वर्णन किया है। भगवान के अवतार के अनेक कारण एक साथ ही उपस्थित हो जाते हैं और उद्देश्य भी भगवान के अवतार के अनंत प्रकार के होते हैं। इस जगत में श्री भगवान का अपने धाम से आना समस्त जीवों के लिए हित के लिए होता है और श्री भगवान ने स्वयं ही भगवद गीता में कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है और धर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। ये वानर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप घूमता है, आप लोग डरिए मत। संस्कृत में इसको कपी कहते हैं। कपी का अर्थ होता है कंपयती इति कपी, जो कपा दे उसको कॉपी करते। एक बार देखने के पर जी कांप जाता है। लगता है हनुमान जी का आवेश इसमें रहता होगा, तो भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनता रहता है। तो भगवान ने कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तक मैं अपने को प्रकट करता हूं। यहां पर इस प्राकृतिक जगत में भगवान का अपने धाम से आना सबके हित के लिए होता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान का आना पसंद नहीं पड़ता। लोग तैयारी करते हैं कि भगवान न आने पा रहे हैं, जैसे कंस। कंस बहुत तैयारी किया कि भगवान यहां न आ पाए, नहीं तो खलों के लिए बहुत खतरनाक है। यहां आते हैं तो भगवान बहुत मारते हैं, खास करके राजाओं को। जो बदमाश राजा होते हैं उनका वो वध करते हैं या करा देते हैं, बहुत सुंदर राज्य की स्थापना करते हैं। भगवान श्री राम तो कुछ देर के बाद वध करना चालू किए। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, उसी दिन से चालू कर दिए पूतना का वध किया उन्होंने। और पूतना क्या थी? पूतना राक्षसी जो बच्चों को मारा करती थी, अपने स्तन में जहर लगा लगा कर बच्चों को मारा करती थी। बताइए बच्चे क्या अपराध किए हैं, लेकिन ऐसे मासूम बच्चों को दूध पिला करके, मां का भेष बना करके, गोपी का भेष बना करके जाती थी, मारती थी। और भगवान श्री कृष्ण को भी उसने ऐसा करना चाहा, परंतु भगवान तो भगवान है, उन्होंने इस प्रकार उसके अस्तनों को दबाया कि वो छटपटा करके मर गई वहीं पर। यह भगवान की विशेषता, अपना स्वभाव स्वरूप। भगवान भले बालक की लीला करें या विश्व रूप धारण करके लीला करें, कुछ भी करें, भगवान तो भगवान है। तो इस तरह से भगवान ने असुरों का वध किया। कई लोगों को तो आना पसंद नहीं है भगवान का, और आते हैं तो उनका कर्म पसंद नहीं पड़ता, तो खलबली मच जाती है। जितने दुष्ट और गुंडे इस संसार में हैं, सब घबरा जाते हैं कि अब तो ये आ गया, अब तो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए भगवान का एक मिशन है विनाशाय से दुष्कृता, दुष्कर्मियों का नाश करके करने आते हैं, इसको भगवान कहते हैं। जिसमें अनंत शक्ति है, जो चाहता है करने कर लेता है। वास्तव में वन में स्वयं भगवान जाना चाहते थे, इसीलिए भरत जी जब ननिहाल गए तो इधर सबके हृदय में प्रेरणा करके और भागे वन में। तो भरत जी रहते तो जाने नहीं दिए होते वन में, वन में जाना चाहते थे। बहुत बड़ा काम था, मुख्य काम था विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्कर्मियों का विनाश। यही संसार के सुख के लिए बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। हाथ जोड़ने से दुष्कर्मी मानते नहीं हैं। ऐसे भगवान प्रयास करते हैं। देखिए, पांडव और कौरवों की संधि के लिए भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं ठीक है, 5 शहर दे दो, 5 गांव, उसमें 5 पांडव रह लेंगे, रखो अपनी धरती। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, दुर्योधन वह नहीं कर सका। और यहां तक कहा कि श्री कृष्ण सुनो, सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। और उसके बाद युद्ध हुआ, 18 दिन में सारी पृथ्वी छोड़कर चला गया। 18 दिन युद्ध हुआ था, लंका में भी 18 दिन युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र में भी 18 दिन युद्ध हुआ था। बस 18 दिन में शरीर भी छोड़ करके और धन घर आदि की बात तो दूर ही रहे, चले गए। भगवान इस तरह कार्य करते। अर्जुन और भीमसेन में शक्ति देकर के उन्होंने अनेक राजाओं का वध करा दिया कुरुक्षेत्र में। भगवान ऐसे नहीं है कि आकर के हाथ जोड़े और उनको ही सूली पर चढ़ा दे, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान में अपार शक्ति है, अपार बल है, ये समझना चाहिए। भगवान कौन है इसको पहचानना चाहिए। वैसे केवल उदारतावाद के नाम पर कह देना कोई भी भगवान है, कोई भी पंथ ठीक है, यह वास्तव में बुद्धिहीनता है, ये प्रॉपर बुद्धि नहीं है। उदार बुद्धि का मतलब होता है आर मतलब बंधन, ऐसे देहात में आर शब्द का प्रयोग होता है, खेत की मेड़ को आर कहते हैं, और उत का अर्थ होता है ऊपर। साधारण धारणा से, साधारण स्टैंडर्ड से परे जो व्यक्ति, उसको उदार कहते हैं। भगवान की लीलाएं उदार हैं, भगवान की शक्ति उदार है, तो किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब शूर्पणखा का नाक कान कट गया तो रोती हुई गई, वहीं पर निकट जन नाम का स्थान था जहां उसके नाता में 3 भाई रहते थे। वो भी भाई लगते थे लेकिन खास भाई नहीं थे, खर, दूषण और त्रिशिरा। उनसे जाकर के रो रो करके कहने लगे कि 2 लड़के आए हैं अयोध्या से, तो दूसरा लड़का जो गोरा लड़का है 1 नंबर का बदमाश है, उसी ने हमारी नाक कान काट दी। तो वो लोग विचार नहीं किए कि क्यों घूमती है फ्री लड़की इधर उधर, क्यों घूम रही है। तो लोग बदला लेने के लिए आए राम से लड़ने के लिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि सुनो लक्ष्मण, सीता को लेकर के कहीं तुम ऊंट में हो जाओ, छिपा लो, ये लोग आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के तीनों भाई आए और भगवान श्री राम ने ऐसा किया। ऐसा अद्भुत भगवान की माया है, उनमें से प्रत्येक को यही अनुभव हो रहा था कि ये राम हमसे युद्ध कर रहा है। सब राम के रूप में दिखाई दे रहे थे। एक राक्षस खड़ा है तो देख रहा है कि ये राम हमारे साथ खड़ा है और हमसे लड़ रहा है। दूसरा देखता है वो राम खड़ा है। सभी को राम के रूप में प्रतीति हो रही थी एक दूसरे को, और वे आपस में ही लड़ करके खत्म हो गए। भगवान को एक भी बाण नहीं चलाना पड़ा, ये कथा है वाल्मीकि रामायण में भी ये कथा है। इस प्रकार से वहां बिना लड़े सब राक्षस समाप्त हो गए। तब इसके बाद अब रावण के पास गई, वहां जाकर के वही विलाप करने लगे। पर कोई भी राक्षस ये नहीं पूछता था कि तुम लंका की हो तो उधर क्यों गई थी, क्या करने गई थी। हमने एक बार रामलीला में देखा था, बहुत सुंदर दृश्य था। रावण का दरबार लगा था, सुरपरखा पहुंची, चिल्ला रही थी, रो रही थी, नाक कान पर फर्स्ट एड कुछ लगाया गया था, रुआ या मलहम पट्टी जो भी की गई थी, पता नहीं उस समय इंजेक्शन दिया जाता था कि नहीं। तो ऐसे रो रो करके खूब विलाप कर रहे थे। रामचरितमानस में कहा गया लास्ट एक दोहा में कि तो ही जियत दस कम धर मोर अकियश गति होए। अरे दस मोड़ी वाला ऐसा भाई, प्रचंड भाई, एक सिर वाला कोई भाई होता तो इसको नहीं सह सकता था। तुम दस सिर रह करके और हमारी दुर्गति को सह रहे हो, हमारी दुर्गति को सह रहे हो, तो ही जियत दशकंधर मोर की असुगति हो। तो दशकंधर रावण बहुत चिंतित हुआ, लगा कहने कौन है जो मेरे बहन की ये दशा किया है, कौन किया है, पता लगाओ पता लगाओ। तो सुरपरखा ही बताती है, अयोध्या के राजा दशरथ के वो दोनों पुत्र हैं और उनके साथ एक स्त्री आई है। तो रावण पूछता है तो क्यों नाक कान काटे, तो कहते झूठ बोलती, कहते हैं कि मैं देखी कोई स्त्री बहुत सुंदर है तो मैंने सोचा कि हमारी भाभी बनेगी, तुम्हारे साथ उसका विवाह हो जाए, इसके लिए मैं उसको फुसला रही थी। तो रावण बहुत खुश हुआ, अच्छा अच्छा, ये बहुत कामी था, संसार में इतना बड़ा गुंडा आज तो कोई नहीं हुआ है रावण जैसा। जहां सुनता था कोई सुंदर स्त्री वहां जा करके जीत करके लाता था और उसी दफा में सीता जी का हरण किया और मारा गया। तो रावण प्रसन्न हुआ है बात सुन करके कि अच्छा हमारी पत्नी बनाने के लिए सीता को फुसला रही थी, झूठ बोली, वहां क्या कही थी वो तो सब आप लोग जानते हैं, वो राम से विवाह करना चाहती थी और बहुत गलत ढंग से प्रस्ताव रखा। तोषम पुरुष न मोषम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। भगवान राम से सुरपरखा कहे कि देखो आज तक मैं 14 भुवन में घूमी लेकिन मेरे लायक पुरुष कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं कुमारी हूं, पर आज तुमको देख करके थोड़ा थोड़ा मन हो गया कि नहीं तुम मेरे योग्य हो। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। भाई लंका में है, बाप कहाँ है, अपना विवाह अपने आप ठीक करने लगी, झूठ बोलती है। कितने लोगों को भ्रष्ट की थी उसकी कोई संख्या नहीं है और कहती है कि आज तक मैं कुमारी हूं। तो भगवान राम ने कहा भगवान तो बोलने में बहुत प्रवीण है, वे कहे कि देखो जी मैं तो विवाह कर लेता, बहुत मधुर बोल रहे थे, लेकिन देख ही रही हो मेरे साथ एक तुम्हारी पत्नी है और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर द्वार में भी नहीं रहने दिया गया, मैं जंगल में रह रहा हूँ, कैसे दो स्त्री का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। ये लक्ष्मण कुमार यहाँ पर हैं, ये बिना स्त्री के आए हैं, और हाँ इनकी सेवा करोगे ये स्वीकार कर ले तो कोई बात नहीं, हम तो देखो दो स्त्री नहीं रख सकते, हमारे पिताजी तीन स्त्री रखे कि मर ही गए, तो हम इस फजीहत में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये लक्ष्मण जी हैं, ये स्वीकार कर ले तो कर ले, भगवान ने व्यंग किया, फिर तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली गई। उसने सोचा कि ठीक कह रहे हैं, बड़ा लड़का संकट क्यों ले, तो गई लक्ष्मण जी से कही कि नहीं, आप हमसे विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए, आप विवाह। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो दो चार मिनट में ही अपना भाग्य क्यों खराब कर रही है, अरे उनकी पत्नी बनोगी तो अयोध्या की रानी बनो, उनकी रानी बनोगी तुम, ये राजा हैं अयोध्या के बड़े भाई, तो उनसे विवाह होगा तो रानी बनोगी, और मेरे साथ विवाह होगा तो दासी ही रह जाओगी, घाटा लग जाएगा, थोड़ा प्रयास करो उनसे, वो राजा लोग कई स्त्री रखते हैं तुम उनसे विनय करो, विनय करो, प्रार्थना करो, मान जाएंगे। उसने सोचा ठीक ही कह रहा है, मैं केवल क्षण भर में ही अपना भाग्य खराब करूं, तो आ गई, लगी इतिहास सुनाने, नहीं राजा लोग बहुत विवाह करते हैं, आप ही कर लीजिए, और वो लड़का हमको पसंद भी नहीं है ये कह रही, नहीं आप ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे। भगवान कहे लेकिन हमारे सामने ये बहुत भारी विवशता है, मैं जंगल में कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैं कैसे दो स्त्री रख सकता हूं। उसी से प्रयास करो, कोई बात नहीं, अरे वो भी तो हमारे भाई ही हैं, वो भी राजा ही है ना, कोई साधारण छोड़े। तो फिर चली गई लक्ष्मण जी के पास, जब दूसरी बार गई तो नहीं आप कर लीजिए, वो नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए, कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो तुमसे वही विवाह कर सकता है जो लाज शर्म घोर करके पी गया होगा, समझी चली है विवाह करने, दर्पण में अपना मुख क्यों नहीं देखती। तो फिर राम के पास आ गए, तो राम जी ने कहा कि हमारी व्यवस्था है, हमारी ऑलरेडी स्त्री है, तो उसने सोचा कि ये लड़का जरूर विवाह कर लेगा, इसके लिए काम करना चाहिए कि सीता को खत्म कर दूं, खा जाऊं। उसने विचार किया और जब ही सीता जी को मारने चली तेवी भगवान ने नाक पर और कान पर संकेत किया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी म्यान से तलवार लिया और उसी समय नाक कान पोंछ दी, समाप्त कर दी। ये वास्तव में भगवान ने राक्षसों को एक चुनौती दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पूरे राक्षसों में खबर जाएगी और हमारे विरुद्ध आएंगे लड़ने के लिए, हम आसानी से इस पृथ्वी का भार दूर कर देंगे, ये चुनौती थी। वो गई खरदूषण के पास तो वो लोग आकर के मरे, 14,000 पे एक दिन में खत्म हो गए, और इसके बाद फिर सीता का हरण किया रावण ने। हाँ तो मैं वो कह रहा था राम दरबार में, रामलीला में एक जोकर था, वो दरबारी था रावण का, सब लोग राय दे रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो वो पूछा, वो राधेश्याम रामायण में शायद वो है लाइन, सरकार अभय दान दे तो मैं कुछ कहना चाहता, हमको अभय दान दे रहे हैं, मेरे बोलने पर बुरा नहीं मानेंगे ना। राम कहा नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या कारण था सुरपड़ख को पंचवटी में जाने का। इससे पूछा जाए सरकार, ये पंचवटी में जाने का क्या कारण था, क्यों गई थी। तब तक रावण कहता है चुप, बेचारी इतना करा रही है, रो रही है, और अभी तुम कारण पूछ रहे हो। नाक से इतना खून गिर रहा था, कान दोनों काट लिया गया था। लक्ष्मण जी ने इसलिए किया कि अब कोई भी सुंदर रूप ना ही बना पाएगी और दूसरे पुरुषों को चक्कर में नहीं डाल पाएगी, इसलिए नाक कान काटा गया था। इस प्रकार भगवान ने चुनौती दिया तो स्वतंत्र स्त्री घूमती रहती थी और उसको माध्यम बनाकर भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया, राक्षसों का संहार किया। तो यह भगवान की लीला है, मैं उधर बह गया। अयोध्या से निकलना ऐसे देखने में लगता है कि अरे तो महाशोक छा गया अयोध्या में, सब लोग मरने लगे, बेहोश होने लगे, तड़प रहे थे, लेकिन भगवान का वन में जाना यह एक मंगलमय चरित्र है। एक भक्त ने मुझसे कहा कि महाराज भगवान के जन्म उत्सव पर आप वन गमन की लीला क्यों कह रहे हैं, इस तो दुख की लीला है। लेकिन वास्तव में दुख की लीला नहीं है, भगवान आनंद के साथ जा रहे हैं, बल्कि दुख मिटाने की यह लीला है। नहीं, बानर का नहीं चढ़ता है, बानर शाकाहारी होते हैं प्राय, तो ऐसे सीधा साधा नाटक कर रहे हैं। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री राम की लीला हो रही थी कि अयोध्या से किस प्रकार निकल रहे हैं। सीता जी से भी भेंट किए, सीता जी को उन्होंने अनुमति दिया, ठीक है तुम चलो वन में, चिंता मत करो। इसके बाद लक्ष्मण जी दौड़े हुए आए, सुनकर के बहुत व्याकुल थे। भगवान ने उनको भी कहा ठीक है, पहले तो शिक्षा दिया, मैं भगवान को चित्रकूट में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए ये सब बातें बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि भैया तुम यही रुको, मेरी माताएं बहुत दुखी हैं, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, भरत और शत्रुघ्न भी गांव पर नहीं है, तो तुम रहो करम सब कर परितोष, नातर तात हो ही बड़ दोष, तुम रहो अयोध्या में और सबको शांति दो, परितोष दो। यहां तक भगवान कहता अन्यथा विपक्ष में बहुत दोष लगेगा, अगर तुम नहीं करते हो ऐसा, मेरे साथ चले जाते हो अयोध्या तो, अरे मन में चले जाते हो तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर नीति कहा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख भोगती है वह राजा निश्चित मरने के बाद नरक में जाता है, निश्चित अवश्य शब्द भगवान कह रहे हैं। इस समय के जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी सुंदर गाड़ियों से घूम रहे हैं, विमान से घूम रहे हैं, इसके बाद जमराज के दूत उनकी जो मरम्मत करेंगे, उस समय यही मनाएंगे बल्कि मैं क्यों इस पद पर था, भगवान का भजन किया होता, सुख से रहा होता तो आज नरक नहीं देखना पड़ा होता। नरक में कितनी दुख की व्यवस्था की गई है ये श्रीमद् भागवतम में पढ़ करके देख लेना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा दुख लिखा गया है। उसमें एक लिखा गया पाप करने वालों को किस पाप के कारण किस नरक में गिरना पड़ता है। एक नरक है जिसको अयस्पान नरक कहते हैं, अयस्पान, अयस का अर्थ होता है लोहा, कच्चा लोहा, पान मन पीना। एक ऐसा नरक है जहां पर लाखों भट्टियां लगाई गई हैं लोहा को गर्म करके द्रवीभूत करने के लिए। एक यहाँ टाटा बोकारो क्या है, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों फैक्ट्री वहां है, मतलब लोहा को गर्म करने के लिए, तो लोहा तरल बन जाता है और उन लोग उन पापियों को उस नरक में ले जाकर को लोहा पिलाया जाता है जो यहाँ शराब पीते हैं। केवल शराब पीने वालों को दंड दिया जाता है, संतोष नहीं होता है पानी पीकर दूध पीकर के। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीना चालू करते हैं। यहाँ तो शराब पी करके थोड़े काल तक आनंद आ रहा है, जिस दिन तरल लोहा पीना पड़ेगा तो क्या हो, और मरेंगे नहीं, वो जब यातना शरीर होता है, यातना शरीर में कितना भी कष्ट हो प्राण नहीं निकलता है, कष्ट सौ गुना अनुभव किया जाता है। मरने के बाद एक यातना शरीर दिया जाता है जीवात्मा को, उसमें दुख की अनुभूति सौ गुना होती है उस शरीर में। यहां एक तमाचा मारने पर जितना दुख होगा तो उस शरीर पर सौ गुण, सौ तमाचा मारने इतना दुख होगा एक तमाचा में। वो दुख का अनुभव करने के लिए ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, उसको यातना शरीर कहते हैं। शरीर मरता नहीं है, जीवित रहता है लेकिन खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, दुखी होता है। एक दिन नरक में ये दुख भोगना पड़ता है, बताया गया है। शराब पीने वालों को दुख, और सरकारी आदमियों के लिए एक रिजर्व स्पेशल नरक है, भागवत में उसको भी लिखा गया है। क्या नरक है जानते हैं? सूकर मुख नरक एक है। उसमें गन्ना जैसे पेरे जाते थे पहले के कल्हुआड़ को, आपने देखा होगा कोल्हू, कई गन्ने एक साथ पकड़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार करोड़ों मशीनें हैं वहां, और जो लोग जनता को सताते हैं उन लोगों को ले जाकर वहां ईख की तरह पेरा जाता है, और चेफुआ बन करके निकलते हैं, फिर ठीक होकर के फिर पेरा जाता है, इस तरह से पेरा जाता है। ये कोई हम लोगों की रचना नहीं है भागवत, ये बहुत काल से है, और भगवान वेदव्यास देव की रचना है। ये बताते हैं कि सरकारी आदमी सब उसमें जाते हैं, यदि पाप करते हैं तो, और पुण्य करें तब तो स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य का फल अद्भुत होता है, यहाँ की कमाई के अनुसार ही जाना होगा। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करने वाले को वहां तप्त सुरमी नरक में ले जाते हैं, जहां लोहे की मूर्तियां बनाई रहती हैं और उनको हीट दे करके लाल किया रहता है, कनेक्शन जोड़कर बिजली का, चाहे जैसे लाल मूर्ति स्त्री की और लाल मूर्ति पुरुष की, तो जहां व्यभिचार करते हैं, विवाह के अतिरिक्त संबंध करते हैं, उनको वहां अगर पुरुष ने नियम तोड़ा है तो उसको लोहे की लाल स्त्री से आलिंगन कराया जाता है, और जमराज के दूत पीछे से उसको मारते हैं बुलेट, जूता पहन करके पीछे से, और आगे ऐसा भांत बंधा रहता है, एक दूसरा दूत खींचता है, चलो चलो आलिंगन करो एंजॉय करो, और उससे आलिंगित होकर के और जलता रहता है लाखों वर्ष तक। इस तरह ये सब सजा है, बुद्धिमान आदमी इन सब बातों को समझ करके पाप से परहेज करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो तो कह देते स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये कहाँ होते है, बस अपनी समझ को ही सब कुछ समझता है। तुम नरक कौन देखा है, नहीं देखे होते इससे क्या, तुम देखोगे उसी को सत्य माना जाएगा, कौन देखा है, बहुत लोग देखे हैं, देखना पड़ता है। स्वर्ग भी देख करके कई लोग आते रहते, महाराज परीक्षित के समय तक देवता लोग यहां आते रहते थे, तो पता लगता था है, लेकिन आज भी वो है भले पता न चले, वो सत्य है। इस बात की मैं यहां व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, इसलिए सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों को विशेष सावधान होना चाहिए। वास्तव में विशेष सावधान होना चाहिए। भगवान ने एक अवसर दिया है, एक चांस दिया है कि जनता की सेवा कर लो, और प्रकट भी देखा जाए तो देश में या राज्य में सब जगह सेवा की ही बात की जाती है। अमुक सेवा आयोग, ये सेवा आयोग, यह सेवा आयोग, सेवा करने का एक चांस दिया गया है, सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम के विषय में जरा ध्यान दीजिए, अपने भाई से क्या कह रहे हैं, तुम रहो और ठीक से प्रजा की देखभाल करो, अन्यथा अगर प्रजा दुखी होगी तो राजा को नरक में गिरना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक के अधिकार, ये भगवान का उद्गार। लेकिन लक्ष्मण जी सीधा कह दिए, गुरु पितृमात जानो कहो, कहो स्वभाव नाथ पति आओ, मैं कुछ नहीं जानता हूं, गुरु को, माता पिता को, भाई को, किसी को भी, मैं आपका दास हूं और मैं आपके बिना जी नहीं सकता। कई प्रकार से विनय के तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, लेकिन जाकर के माता सुमित्रा से अनुमति ले लो, आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी गए, माँ ने आज्ञा दिया, अनुमोदन भी किया, बहुत अच्छा बेटा, राम की सेवा करो जाकर के वन में। वास्तव में सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेह, तुम जाओ वन में सेवा करो। लास्ट आदेश का सार उसने कहा, जही न राम बन लहि कलेशु, सोईसुत कर हुई है उपदेश। बस सारे उपदेशों का सार यह है बेटा, राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सुख होना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम जग करके रात दिन सावधान होकर के राम की सेवा करना। राग रोष ईर्षा मदमोह जनी सपने हूं इनके बस हो, तुम किसी दूसरे के राग में मत पड़ना, द्वेष करना, और न रोष न मोह कुछ भी नहीं, रात दिन राम की सेवा करना। मैं धन्य हूं, मैं वास्तविक पुत्रवती हूं, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त हो, तो मैं वास्तव में अपने को धन्य मानती हूं। भूरि भाग भाजन भयो तुम समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन राम पद छाओ। धन्य है मेरी कोख बेटा, तुम इसे जन्म लेकर के और राम के भक्त बन गए। किसी माता के लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसका बेटा भगवान का भक्त बने, यह बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है जाओ जाओ जाओ, तो लक्ष्मण जी चले आए। उसके बाद भगवान गए दशरथ जी के पास, पिताजी से आज्ञा मांगे। दशरथ जी लाखों उपाय किए रोकने का, लेकिन भगवान रुके नहीं। फिर कई कई ने वो मुनि के उचित वेश ला करके रख दिया, भाग्यराम तुम पहनो ये और निकलो अयोध्या से, ये तुम्हें नहीं कहेंगे जाने के लिए, अगर तुम वास्तविक पुत्र हो इनके तो इनके धर्म की रक्षा करो और ये पहनो। तब भगवान वहां पर पहने मुनि जनोचित वेश और सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निकलने लगे। अयोध्या में बहुत बड़ा हाहाकार मच गया, यहां तक कि भगवान के जाने के साथ वे सब लोग निकल गए कि हम भी वन में रहेंगे, हम भी मरेंगे, किसी तरह दुख भोगेंगे, हम नहीं रहेंगे। भगवान रोक रहे थे, नहीं रोके लोग, रुकने से कोई रुका नहीं, चले गए। भगवान के साथ ही तमसा नदी के तीर पर चले गए, वो तमसा नदी आज भी है। वहां जाते जाते शाम हो गई, प्रथम वास तमसा भय, दूसर सुर सरी तीर, ये सुमंत जी महाराज दशरथ को बताएंगे। तमसा नदी के तट पर पहुंचे, दिन भर के कोई खाए नहीं थे और रोए थे दिन भर, व्याकुल थे राम के विरह में, और भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की माया से सब लोगों को नींद आ गई रात बीतने पर। कुछ सुमंत जी को दशरथ जी ने भेजा था कि हे मित्र जाओ राम सीता लक्ष्मण को केवल 4-5 दिन घुमा करके लाओ, या 14 वर्ष के बाद में 14 दिन घुमा करके लाओ, तब मैं जी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा। तो सुमन जी रथ लेकर के गए थे, तो वहां पहुंचे तमसा नदी के तीर पर, सब लोग सो गए। तो रात में भगवान ने कहा सुमन जी से कि आप ऐसे कीजिए, हम सीता और लक्ष्मण चढ़ते हैं रथ पर, आप रथ को इस गति से हाकिए कि कहीं रथ का लिख मिले कहीं नहीं मिले, कहीं रथ का चिन्ह मिले कहीं नहीं मिले, कभी अयोध्या की तरफ पहले हाकिए और इधर उधर, जिससे कि लोग हमको पा ना पाए। तो इस तरह से उन्होंने रथ को हाका, भगवान का आदेश था। जब भोर में लोग जगे, सवेरे जागे, देखने लगे रथ का चिन्ह, तो रथ कर चिन्ह कतहु नहीं पावा, रथ का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं लगता था कि इधर गया इधर गया इधर गया। बाद में कि भगवान की इच्छा से सुमन जी रथ को लेकर सीधा गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के पास श्रृंगवेरपुर है, उसके निकट वो पहुंचे, तो वहां पर निषाद राज रहते थे, आज भी श्रृंगवेरपुर है, और गंगा के तट पर ही लगभग है। वहां पता लगा निषाद राज को, तो वे आए भगवान से मिलने के लिए। वे महाराज दशरथ के अधीन एक राजा जैसे ही थे, महाराज दशरथ उनको बहुत मानते थे। तो भगवान श्री राम को अपने सखा के रूप में वो मानते थे। सुने कि राम आए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ, और ये भी सुने कि इनका राज्य तिलक नहीं हुआ और इनकी सौतेली मां ने इनको वन में जाने को कहा, इसलिए आ रहे हैं। वो आए देखे तो बहुत दुखी हुए, पैर में कोई जूता नहीं और वेश भी बिल्कुल मुनि का वेश, और जटा बड़ी हुई, जटा मतलब केस नहीं संवारे थे, जटा तो बनाएंगे गंगा जी के तट पर, बरगद के दूध द्वारा भगवान ने जटा बनाया अपने केस को, कभी तेल नहीं लगाया 14 वर्ष, कभी कंघी नहीं किए, निर्व्याज धर्म का पालन किया भगवान ने, कोई कपट नहीं, कोई बहाना नहीं, करना है तो करना है, जमीन पर सोना, कंदमूल फल खाना, बलकल वस्त्र पहनना, कभी किसी गांव में न जाना, किसी से कोई संसारी चर्चा न करना, ये सब बात तक भगवान पालन कर रहे थे। तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ, बहुत लंबी कथा है, वो लगे कहने कि आप चलिए हमारे घर रहिए, वो भी तो एक छोटे से राजा थे, आप हमारे घर रहिए, आराम से रहिए, सब लोग रहे। उधर क्या हुआ कि तमसा नदी के तट पर जब नहीं मिले भगवान राम, तब ये लोग लौट गए अयोध्या, बहुत दुख के साथ अयोध्या वासी। इधर निषाद राज के पास भगवान कहने लगे कि मित्र, मेरे पिताजी का आदेश है कि मुझे 14 वर्ष वनवासी मुनि व्रत लेकर के रहना है, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता हूं। तब निषाद राज व्यवस्था किए, गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर के पास ही गांव से बाहर एक शिशुपा का वृक्ष था, उसके नीचे रात को विश्राम करने के लिए बनाया, और कंद मूल फल मंगाए बाहर वाले, कई निषादों को भेज कर कहे कंद मूल फल लाओ, तो उसका भगवान ने भोजन किया और वहीं पर रात को सोए विश्राम किए। निषाद राज और लक्ष्मण जी रात में बहुत बात किए, निषाद राज बहुत रो रहे थे देख करके, वैकुंठ के अधिपति है साक्षात पर ब्रह्म भगवान, और वे धूलि में शयन करे कुश पर के घास पर, कुश पर पत्ता पर, तो रोने लगे। तो लक्ष्मण जी उनको बहुत उपदेश कर रहे थे, अब चिंता मत करो, अरे साक्षात हैं, लीला कर रहे हैं, और इसीलिए सब लीलाएं कर रहे हैं कि इनको गा करके सुन करके भक्त भव सागर से तर जाएंगे, इनको कोई दुख नहीं है, ये दुख सुख से परे हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तब निषाद राज कुछ धीरज रखे, सवेरे होने पर भगवान ने सुमंत जी को भेजा, कहा कि जाकर के पिताजी से कह दीजिएगा ये बात। सुमंत जी ने कहा कि सीता जी के लिए दशरथ जी ने ये कहा है, आपके लिए ये कहा है, लक्ष्मण जी के लिए ये कहा है, और कम से कम आप नहीं लौट सके तो सीता को लौटा दीजिए, महाराज दशरथ ने कहा। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। भगवान ने कहा कि देखो सीता, तुम्हारे लिए पिताजी का संदेश है, तुम लौट जाओ, रथ है, रथ पर चली जाओ। नहीं, सीता जी नहीं लौट। सुमंत जी जो चले हैं अयोध्या बिना राम के, तो उनके उस अयोध्या गमन के दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत हृदय विदारक किया, बहुत दुखमय है। तो पहुंचे अयोध्या, तब गोस्वामी जी दूसरी कथा करते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेजा और इसके बाद गंगा जी के किनारे वे आए। बहुत सिंपल कथा है। वहां आने के बाद ऐसी बात है कि और दिन लक्ष्मण जी मांगते थे, किसी से कुछ मांगना हुआ मांग लीजिए, अभी तो मांगने का कोई अवसर नहीं आया, तो भगवान श्रीराम ही स्वयं जा करके तट के पास कहे, एकेवर ओ धीवर नौका लाओ, मांगी नाओ, न केवट आना। लेकिन केवट लाया नहीं, आना माने आना नहीं, आनयन नहीं किया, नहीं लाया। बार बार भगवान ने कहा ओ धीवर, धीवर कहते हैं संस्कृत में मल्लाह को, ओ नाविक नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है। आखिर पार करने के लिए ही रखे हो ना यहां नौका, तो बोल नहीं रहा था। भगवान ने दो तीन बार कहा वो नाविक नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गीत में अनूप जलोटा जी गाते, वो ऐसे कर रहा था जैसे सुन नहीं रहा है। इसके बाद ध्यान से सुना, वास्तव में महान भगवत भक्त पुरुष था वो, उसे इतना आह्लाद हुआ कि भगवान गंगा जी के तट पर आए हैं तो इनका चरण कमल मैं धोऊंगा, ये मेरा अहोभाग्य होगा। तो भगवान का चरण कमल धोने की लालसा से वो एक अजीब ट्रिक किया, क्या आप कौन हैं, आपका नाम, नाविक पूछता है। अरे भाई मेरा अयोध्या घर है और मैं रहा राजा दशरथ का पुत्र हूं और मेरा नाम है राम। राम मैं नहीं लाऊंगा नाव, जो सीधा कहा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है नौका पार करने के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों, क्या बात है, कहीं तुम्हार मरम में जाना। उसने कहा कि आपका मर मैं जानता हूं, आपका रहस्य मुझसे छिपा हुआ नहीं है। कि कौन सा रहस्य है, भगवान इस तरह से मानो पूछते हैं कौन सा रहस्य है मेरे विषय में। अरे बहुत दुनिया में विख्यात रहस्य है, तो मैं जानता हूं, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। क्या मर्म है, नौका पर तो चढ़ाओ। नहीं नहीं, उसी के विषय में तो बता रहा हूं, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सब लोग कहते हैं चारों तरफ कि आपके चरण की धूली में मनुष्य बनाने की शक्ति है, ये मर्म मैं जानता हूं, मनुष्य बनाने की शक्ति है। कहां सुने हो, तो सब कही, सब कहते हैं, छिपी हुई बात थोड़े है। सब कहते हैं कि आपके चरण कमल में जो रज है, धूली है, मानुष करनी, मनुष्य बनाने की शक्ति रखती है। ये कैसे, कौन कहता है, तो केवल कहता मैं सुना हूं, छुअत शिला भाई नारी सुहाई। मैं सुना कि आप सिद्धाश्रम से बक्सर से जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर से आपके चरण धूली छुआ गई, तो पत्थर ही बहुत ब्यूटीफुल नारी बन गई, हमने सुना है। क्या इस असत्य है? तो भगवान अब कैसे कह सकते थे कि असत्य है? अरे सत्य है ना, सत्य है। लेकिन ठीक, देखिए अगर ये ऐसा होता है, एक तो बात सत्य है, गौतम जी की पत्नी अहिल्या साप बस पत्थर हो गई थी, तो भगवान के चरण रज के स्पर्श से स्त्री हो गई, ये बात सत्य है। लेकिन अयोध्या से यहां तक आने में कितने पत्थर पड़े होंगे, क्या सब स्त्री ही हो गई? सोचने की बात है। लेकिन केवट का प्रेम ऐसा था कि उसने सोचा कि इस तरकीब से चरण कमल धोऊंगा। उसने ये भी कहा कि आपका दोष नहीं है, आप में ऐसा दोष कुछ नहीं है, आपके चरण की धूली में दोष है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई, ये तो घटना हुई थी कि एक बार एक पत्थर को मैं छू दिया, मेरे चरण कमल से टच हो गया, तो एक पत्थर स्त्री के रूप में बन गई थी। हाँ ये बात तो सत्य है। तो उसने कहा जो पत्थर स्त्री बन गई तो काठ तो और कोमल है। पाहन तेन काठ कठिनाई, अरे बाप रे बाप, जब पत्थर स्त्री हो गई तो ये काठ तो और कोमल। अच्छा, वह भी ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए नौका हमारी अगर स्त्री बन जाए, तो अगर हमारी जात में हो, हमारे साथी रहे, तब तो ठीक है, तरनी मुनि घरनी हो जाए, ये नौका भी स्त्री बनेगी तो मुनि की स्त्री हो जाएगी, गौतम जी की स्त्री फिर गौतम जी की स्त्री हो गई। वैसे और भी विनय पत्रिका कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक ही स्त्री का खर्चा चलाना कठिन है, दो दो स्त्री घर में हो जाएगी तो कैसे चलाऊंगा। लेकिन यहां पर दूसरे तरह से कह रहे हैं कि नौका मुनि की स्त्री बन जाएगी, जो शिला को आप छुए तो वो तो पहले से ही मुनि की औरत थी। वास्तविकता तो ये है, गौतम जी की पहले से पत्नी थी और बाद में भी चले गए पतिलोक आनंद भरी। इस कथा को किस रूप में ले रहा है, केवल चरण धोने की लालसा, तरने मुनि घरनी हो जाए, बाट परई मेरी नाव जाए, मेरी नाव स्त्री हो जाएगी फिर चली जाएगी किसी मुनि के पास, ये रास्ता बंद हो जाएगा, मेरी नाव ही उड़ जाएगी तो फिर अब स्त्री बनकर, वो भी उड़ी थी ना, वो भी स्वर्ग में चली गई गौतम जी के पास, वो सप्तर्षियों में एक है, तो उनके पास चली गई, तो मेरी नाव उड़ाए ये भी उड़ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, इसी नौका से ही मैं सारे परिवार का पालन कर रहा हूं, पात भरी मछरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जात कछु, मुझे तो याद नहीं ऐसे कह रहा है, तो यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, सारे परिवार का पालन पोषण इसी से होता है, नौका चलाता हूं, नहीं जानो कुछ और खबर कबार, और कोई कारोबार नहीं है मेरा, और कोई काम धंधा नहीं है, केवल नौका है, तो मैं बहुत डर रहा हूं, मैं आपको कमर भर पानी दिखा देता हूं, वहां से चले जाइए, मैं पानी जानता हूं कहां कम है, वहां से पार हो जाइए, लेकिन हमारा काम धंधा बंद मत कीजिए। तो भगवान ने कहा अरे भाई, वहां कैसे सीता कैसे पार करेगी? भगवान इस तरह से परवस्ता कर, कैसे सीता पार करेगी, ये तो बहुत कठिन काम है, नहीं नहीं हम नौका से ही जाएंगे। कुछ उपाय करो, केवट कहता है एक उपाय है, अगर आपके चरण से धूलि का अपसारण हो जाए, धूलि दूर हो जाए, तब हमें भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपके चरणों के धूलि में शक्ति है, तो धूलि से डर लगता है, तो जौ प्रभु पार अवसिगा चहं मोहिपद पदुम पखारम कहूं। अगर आप अवश्य इसी नाव से ही पार होना चाहते हैं तो मुझे अपना चरण कमल पखारने के लिए कही, चरण पद में पखारने के लिए कही, धोने के लिए कही। केवट की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी कुछ भाव तरेर रहे थे, उनको क्रोध हो रहा था कि इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है, सीधा साधा इसको पार करना चाहिए, एक सेवक है ये। केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहां मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब सची कहूं। मैं चरण कमल धो करके चढ़ाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है, और आप ये भी चिंता मत कीजिए, मैं पार करूंगा, आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, खवाई नहीं लूंगा, आपकी और आपके बाप दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं, साची बात कहता हूं, किसी भी तरह से मैं बिना चरण धोए नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। यहां तक कि लक्ष्मण जी अगर बाण भी मार दें, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी चरण धोए पार नहीं करूंगा। बरु तीर मारू लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हम। यदि लक्ष्मण जी बाण भी चला दे हमको, मार भी दे, लेकिन जब तक पाए, जब तक चरण प्रक्षालन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं, हे तुलसीदास जी के स्वामी, मैं आपको पार नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। देखिए, भगवान विनय कर रहे हैं केवट से गंगा पार करने के लिए। कौन प्रभु निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने इस विश्व को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, दो पग में ही नाप लिया था पूरे ब्रह्मांड को, वे प्रभु केवट से निहोरा कर रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, लाओ लाओ लाओ, कहे नहीं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए ही है, मार दे, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतने खतरनाक काम नहीं कर सकता, अपने परिवार को मार दूं, कमाई बिना, ये सब खाने बिना मर जाए, मेरी नाव चली जाए, ये नहीं कर सकता। कुछ है महात्मा लोग कथा कहते हैं कि क्षीर सागर में एक बार भगवान शेष सज्जे पर सोए थे, तो कछुआ भगवान के चरण को देख करके छूना चाहता था, तो शेष नाग फुफकार मार रहे थे, हटा दी, डर करके भाग गया, और लक्ष्मी जी भी नहीं चाहते थे कि छुए। यहां पर भाव दिया कि लक्ष्मी जरूर कुछ क्रोध में हो रहे हैं राम से ऐसी बात करने पर, तो इसी पर वो कह रहा है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, जो भी सत्य हो स्वाभाविक है, तो कहता है कि लक्ष्मण जी तीर भी मार दें तब भी मैं बिना चढ़ाए नहीं, बिना चरण धोए नहीं चढ़ा सकता। तो भगवान ने हंस करके कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी नाव बची रहे वो काम करो, जैसे नाव बची रहे। उसने कहा ठीक है, मैं इसके लिए टेस्ट पहले करना चाहता हूं। तो कठौता में पानी लाया, काठ के बर्तन में, राम जी को यह दिखा रहा है कि मैं टेस्ट कर रहा हूं, अगर इसको छुआने से काठ का बर्तन अगर नारी नहीं बना तब मुझे कुछ आश्वासन होगा। अपने मन में सोच, तो कठौता में पानी भर करके लाया, अथवा उसके पास काठ का ही बर्तन था जो नौका पर भार न बढ़ावे, तो पीतल आदि का बर्तन रखने पर भार ज्यादा होता, और वैसे उसके पास ठिकाना भी नहीं था, कुछ था भी नहीं बर्तन, तो काठ के बर्तन में लाया और भगवान के चरण को पखारने लगा बहुत आनंद के साथ, आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा, चरण पखारने लगा। पहले बहुत कलात्मक ढंग से चरण के तलवे को धोने लगा और देर कर रहा था, भगवान कहे हो गया नहीं नहीं नहीं, उंगली के इधर उधर संधि में धूली कहीं फंसी होगी, कहीं भी एक रज भी है तो बहुत खतरनाक है। पहले इसको जब चरण पर खाने लगा केवट तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर और केवट के ऊपर, और कहने लगे कि ऐसा में पुण्य पुंज को ना बरस समन सुमन सुर सकल सिंहाही, ऐसा में पुण्य पुंज को ना, धारावाहिक फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग विमान से आकर के, और कहने लगे कि इसके समान पुण्य का सुकृत का पुंज इस जगत में कोई नहीं हुआ आज तक, अद्भुत सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान कह रहे अब हो गया ना, नहीं इधर फंसी है धूली, इधर फंसी है, इधर फंसी, कई प्रकार से मन भर करके भगवान के चरण पद्म को पखारा। उसके बाद कहा कि हाँ ठीक, पद पखारी जल पान करी, चरण कमल धो करके और फिर जल पिया, पानी तो काफी था तो उसको पिया, आप सहित परिवार स्वयं पिया और जो बच्चे थे पत्नी थी सबको दिया पीने के लिए, आप सहित परिवार परिवार के साथ पिया, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया उलई पार। इसके बाद आनंद के साथ भगवान को ले गया, भगवान चढ़े, सीता जी को पहले चढ़ाए, सीता जी को पहले चढ़ा, ये वास्तव में साइंस है, ये सामाजिक शास्त्र है, कहीं भी कहीं जाना हो तो स्त्री को पहले चढ़ाना चाहिए, यदि आप छूट जाते हैं प्लेटफार्म पर तो किसी न किसी उपाय से पकड़ लेंगे, लेकिन स्त्री छूट जाएगी तो बेचारी वो फिर एक कथाकार ऐसे कह रहे थे, ये आप चलती गाड़ी में मान लीजिए थोड़ा तेज हो जाए तो चढ़ सकते हैं लेकिन स्त्री नहीं चढ़ पाएगी। तो भगवान पहले सीता जी को चढ़ाए और इसके बाद चढ़े लक्ष्मण जी पीछे से चढ़। तो एक बात विशेष कारण को स्वामी जी की, पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयउ मुदित लई पार, पहले वो पितरों को पार कर दिया, मतलब उसके इस कार्य से, इसके शुभ कर्म से, भक्ति से उसके पितर पार हो गए, भव समुद्र पार हो गए, कई दुर्गति में गिरे होंगे वे सब लोग भी पार हो गए। भगवान के चरण कमल पखारने का सौभाग्य बहुत मुश्किल है, इस सौभाग्य से उसके पितर सब पार हो गए, अर्थात केवट केवल अपने परिवार को, वर्तमान परिवार को नहीं तारा, कई पीढ़ी के लोगों को भी तार दिया, पितरों को भी तार दिया, भगवान की भक्ति से ही पितरों का उद्धार होता है। तो वहां गए, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सीए राम गुह लखन समेता। तो फिर जाकर के पार होकर के गंगा जी के बालू पर सब खड़े हुए, कौन कौन, सीता राम निषाद राज और लक्ष्मण, और इसके बाद तब केवट उतरा, ये लोग चार लोग पहले उतर करके खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। फिर श्री भगवान को बहुत संकोच हुआ, इस बेचारे को मैंने कुछ दिया नहीं, ये भगवान का स्वभाव होता है, वो बहुत देते हैं फिर भी उसको बहुत थोड़ा मानते हैं कि मैंने बहुत कम दिया, बहुत कम दिया। अभी आप सुन रहे हैं पितर सब पार हो गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए, तो भगवान सोचने लगे मैं इसको कुछ नहीं दिया, केवट उतर करके जब दंडवत प्रणाम किया, भगवान सोचने लगे कि इसको मैं कुछ दिया नहीं, बेचारे की जीविका है नौका चलाना, उसे कुछ पैसा लेना और परिवार पोषना, मैंने कुछ दिया नहीं। भगवान के मुख कमल को देख करके सीता जी तुरंत समझ गई, पिए ही किस ये जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने प्रियतम के मन की बात जानती है कि इस समय क्या सोच रहे हैं, तुरंत समझ गए कि ये केवट को कुछ देना चाहते हैं, संकोच में पड़े हुए, तो उन्होंने अपने आंचल से छिपा करके मुंदरी निकाल लिया और भगवान के हाथ में धीरे से पकड़ा दिया, जो केवट नहीं देखा। तो भगवान ले करके प्रसन्न हुए और कहे, कहयु कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने उस सोने की मुद्रिका को लेकर के केवट को देना चालू किया। तो तुमने बहुत आग्रह किया कि तुम्हारी जीविका है, तुम इस तरह से अगर फ्री सबको चढ़ाओगे तो कैसे तुम्हारा परिवार चलेगा, ले लो ले लो ले लो। देखिए भगवान श्री राम का आदर्श जीवन, इस तरह से किसी गरीब के जीविका को अपने ध्यान में रखना, ये कितनी बड़ी बात है। आजकल के आदमी जो धनी मानी है चाहे अच्छे हैं, अगर ऐसे पर तो केवट पर डांट करके कहें चलो अंतर करके चल देंगे, फिर को पूछेंगे नहीं कि तुमको मिला नहीं मिला। अगर वो मांगे कि सरकार हमको एक रुपया दीजिए, आए इतना पैसा कमाते हो क्या होता है, चलो इस तरह की भाषा बोलते हैं। सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। इसी पाटलिपुत्र में चाणक्य पंडित हुए थे, उनके विषय में हमने सुना है कि उनसे मिलने के लिए सिकंदर का मंत्री आया या सेनापति आया, चाणक्य पंडित जी से, जो महाराज चंद्रगुप्त के राजमंत्री महामंत्री थे। तो उस समय वे अपने ऑफिस में सरकारी काम देख रहे थे, कुछ कागजात देख रहे थे चाणक्य पंडित जी। तो एक वैसा ही दीपक रखा हुआ था, एक दीपक जलाए थे, शाम हो गई थी, तो आया मिलने के लिए वह सिकंदर का प्रतिनिधि अलेक्जेंडर का, जो विश्व विजयी था, आकर के इसी पटना क्षेत्र में उसकी हार हुई थी, यहीं पर उसने अपना घुटना टेका था। वो चाणक्य पंडित के नीति के कारण, तो इस प्रकार जब चाणक्य पंडित से मिलने के लिए आया, वो एक दीपक में कुछ काम कर रहे थे, जो उसके बैठने पर उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया, एक दूसरा दीपक जला लिया और उस दीपक को बुझा दिया, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया वो प्रतिनिधि कि आखिर इस दीपक में भी हम लोग बैठकर बात कर सकते थे, तो उसको क्यों बुझा दिए, नया क्यों जला लिए दूसरा दीपक। तो उन्होंने कहा कि उस दीपक के प्रकाश में मैं सरकारी काम देख रहा था, राजा का काम देख रहा था, तो उसमें सरकारी तेल लगता है, उस दीपक में सरकारी पैसा लगता है, और मैं आपके साथ व्यक्तिगत बात करने जा रहा हूं, तो इसमें मेरे वेतन का पैसा लगता है। दो दीपक रखे थे, दीपक भी जला रहे, तो प्राइवेट बात जो है व्यक्तिगत, तो अपने वेतन का लगाएंगे, सरकार का नहीं, राजा का पैसा इसमें नहीं लगेगा, राजा का पैसा जब राजा का काम करेंगे तब तो लगेगा। आजकल के मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए, कितना पवित्र जीवन हो जाएगा, कितना बड़ा देश पर जो भार है वो चलाने का कितना कम हो सकता है। अपनी आवश्यकताएं इतनी अधिक बताते जाते हैं लोग, बताते जा रहे हैं, और जनता पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये सब बातें जो है भगवान राम की एक साधारण सी लीला है, केवट को निहोरा कर रहे हैं लेने के लिए उतराई, ये समाज को कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। चाहे चाणक्य पंडित का इस तरह अपने वेतन का दीपक जलाना, वेतन के पैसे का दीपक और सरकारी कोष का पैसा, दीपक भी फालतू नहीं जला सकते थे। इसमें एटीट्यूड दिए गए हैं, सब गुण है, वास्तव में मनुष्य सीख सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हमने पढ़ा था एक बार लाल बहादुर शास्त्री से, जब वो भारत के रेल मंत्री थे, तो उस समय उनकी लड़की की लड़की या कोई ऐसी बच्ची थी जिसकी स्लेट फूट गई थी। स्लेट शुरू शुरू बच्चे लिखते हैं। तो उसने कहा कि पिताजी हमारी स्लेट फूटी हुई है। तो कहे ठीक है बेटी, अगले महीने में जब तलब मिलेगा तब दूंगा, अगले महीने में जब मुझे मासिक वेतन मिलेगा तो मैं उसमें से खरीदूंगा स्लेट। इस प्रकार के लोग भी भारत वर्ष में हुए हैं। अभी वर्तमान की ही बात है, बहुत वर्ष पहले की नहीं है। यह भगवान राम के जीवन में है, किसी गरीब को सहारा देना चाहिए, न कि उसके ऊपर और हम थोड़ा सा भार बढ़ावे, हम थोड़ा सा भार बढ़ावे। भगवान विनय निहोरा करने लगे, कहे कृपाल ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट भगवान के चरणों में गिर गया, व्याकुल हो गया और कहने लगा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दवा। हे नाथ, आज मुझको कौन सी वस्तु संसार में जो नहीं मिल गई, मुझे सारा पुरुषार्थ मिल गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया, हमारे जीवन के सारे दोष दुख दरिद्रता ये सब मिट गए, और दावा मत दुख सारी व्याकुलता जलन सब कुछ मिल गया मिट गया। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी फलपूरी। बहुत काल तक मैंने मंजूरी की मजदूरी किया, लेकिन ईश्वर ने ब्रह्मा ने आज मुझे पूरा पूरा मजूरी दिया। मैं आपका दर्शन किया, आपका चरण कमल पखारा, अब कछ नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह मोर तोरे। हे नाथ, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, कि आप हमें अपना एक सेवक मानते रहें। भगवान बार बार विनय कर रहे थे, ले लो ले लो। तो उसने कहा कि एक एक बात मैं ले लूंगा, ठीक है। फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर भर देवा। और भी चलाकी किया, आप वन से लौटते समय जो देंगे ले लूंगा, ये अभी रखिए, आपके पास ऐसे भी कुछ नहीं है, जंगल में जरूरत पड़ जाएगी, आप जाए फिरती बार जो देंगे ले लूंगा। इसका मतलब कि आप जरूर आइए लौटते समय भी, ये प्रार्थना थी, लौटते समय आइए जो दीजिएगा हम ले लेंगे। और ऐसा वर्णन है कि भगवान जब चले पुष्पक विमान से तो केवट के उस स्थान पर वे उतरे थे और गंगा जी में फिर स्नान किए और वहां से चले। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर भर लेवा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। तो लक्ष्मण जी भी बार बार कहे, नहीं ले लो ले लो ले लो। सीता जी कहने लगी, ले लो, लेकिन केवट कुछ भी नहीं लिए। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा किन्ह करुणा यतन भगत विमल वरदे। तो भगवान ने निर्मल भक्ति का वर दे करके उसको विदा किया। इसके बाद भगवान श्री राम गंगा जी के उस पार हो करके पूजन किए, स्नान किए, उस पार जाकर के, सवेरे का समय था, इस पार स्नान नहीं किए, उधर स्नान किए और पार्थिव पूजन किए और भगवान शिव को प्रणाम किए वहीं से मन ही मन। इसके बाद सीता जी गंगा जी की पूजा करने लगी। सिय सुर सरिहिं कहउ कर जोरी। सीता जी गंगा जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, मातु मनोरथ पुरऊब मोरी। हे माँ गंगा, तो मेरा मनोरथ पूरा करो। श्री सीता जी विनय कर रहे हैं गंगा जी से, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। हे माँ, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पति और देवर के साथ वनवास पूरा करके कुशल पूर्वक यहाँ आऊं और फिर मैं तुम्हारी पूजा करूं। पतिदेवर संग कुशल बहोरी आई करूं जय पूजा तोरी। यह है वैदिक भारतीय निष्ठा गंगा जी के प्रति। सीता जी विनय कर रही है, अद्भुत प्रसंग है, और मांग रहे हैं गंगा जी से आंचल हाथ में लेकर के आंचल पसार करके मांग रहे हैं। पतिदेवर संग कुशल बहोरी आई करो जय पूजा तोरी। मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल अपने पुरुषार्थ से ही कुशल या मंगल नहीं होता है, बहुत लोगों का आशीर्वाद चाहिए उसमें, देवताओं का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद, इसकी कामना करनी चाहिए। गंगा जी एक देवी हैं जो वास्तव में वैकुंठ से आई हुई हैं धरातल पर, और अनादि काल से भक्तों के मनोरथ को पूरा करती रहती हैं। विनय न निर्मल पानी जय गंगा महारानी। तो कितने दीनहीनों को इन्होंने उनका घर भर दिया, कितने पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र दिया गंगा जी ने, अनादि काल से दे ही रही है। गंगा जी से इस प्रकार का विनय बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल से लौटू। बहुत भयावह जगह पर जा रही है, वन में जा रही है जहां राक्षस रहते हैं और कई हिंसक जीव रहते हैं, कई प्रकार का दुख होगा, लेकिन गंगा जी के प्रताप से, गंगा जी के वरदान से ये कुशल लौटेगी। ये तो कुशलता की साक्षात देवी हैं सीता जी, लेकिन फिर भी मनुष्य लीला में वे मांग रही हैं गंगा जी से। जब सीता जी गंगा जी से मांग रहे हैं तो कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसा पुरुष होगा जो गंगा जी से आशीर्वाद नहीं मांगेगा। वो गंगा जी के आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। पतिदेवर संग कुशल बहोरी आई करो जय पूजा तोरी। सीता जी के इस वचन को सुन करके गंगा जी के लहरों से आवाज निकली मनुष्य की भाषा में। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन के ही। हे श्री राम प्रिया वैदेही, राजा विदेह की पुत्री, तुम्हारा प्रभाव किसको विदित नहीं है, आप साक्षात लक्ष्मी हैं और आपकी कृपा की ही काहे रुख देखते हैं लोकपाल लोग। लोकप हो ही बिलोकप तोरे, तो ही सेवा ही सब सीधी कर जोरे। आठों लोकपाल तुम्हारी कृपा की याचना करते हैं और सारी सिद्धियां तुमको हाथ जोड़ करके सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन मही दिन बह। तुमने जो हमारी विनय की, हमको वास्तव में तुमने बढ़ाई दिया है, कृपा किया है, फिर भी हे देवी अपनी वाणी को सत्य करने के लिए मैं जरूर आशीर्वाद दूंगी। अपनी वाणी हमारी सत्य हो, वो तो पूर्व सहित तुम में है ही, लेकिन लोग कहेंगे कि गंगा जी ने आशीर्वाद दिया इसलिए ऐसा हुआ है। तो अपनी वाणी को सत्य करने के लिए, सफल करने के लिए, तदपि देवी मैं देवी अशीषा सफल हो नहीं तो निजवागीसा, मैं अपनी वाणी को सफल होने के लिए आशीर्वाद दूंगी। तो गंगा जी आशीर्वाद दे रही हैं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलायाई, पूजी सब मन कामना सुजस रहे ही जग छाए। गंगा जी आशीर्वाद दे रही हैं अपने प्राणनाथ श्रीराम और देवर लक्ष्मण जी के साथ। तुम कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश सारे जगत में छाएगा। इस प्रकार गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सी सुरसरी अनुकूला। इस प्रकार जब गंगा जी के वचन को सीता जी ने सुना तो सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई, कि गंगा जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, तो बहुत प्रसन्न हुई। वो बार बार सोच रहे थे कि गंगा जी अनुकूल हैं, गंगा जी अनुकूल, मुदित श्री सुरसरी अनुकूल है। तब भगवान श्री राम ने निषाद राज को कहा कि हे मित्र, तुम बहुत दूर चले आए हो, चलो चलो तुम लौट जाओ। निषाद राज ने कहा कि नहीं, अभी 4 दिन और रहने दीजिए, मैं कुछ सेवा करके आपको रास्ता दिखा करके लौट जाऊंगा। ये प्रयागराज तक चले आए, लौटे नहीं, प्रयागराज से भी आगे गए निषाद राज 1 दिन, उसके बाद लौटे थे। ये प्रसंग है आगे। हाँ, तो इसके बाद भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे किनारे मतलब पथ से प्रयागराज आए। प्रयागराज को देखकर भगवान ने प्रणाम किया। प्रयागराज 3 नदियों के संगम स्थान है, गंगा, सरस्वती और जमुना जी। बहुत महत्व है प्रयागराज का, यहाँ पर वर्णन काफी किया गया है कि वहां वे गए, पहले स्नान किए, स्नान के बाद भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी ने बहुत स्वागत किया, लेकिन भगवान केवल वहां 1 रात रुके प्रयागराज। भरद्वाज जी ने सेवा किया भगवान का, वही कंदमूल फल आदि के द्वारा। शायद भगवान को तो आगे बढ़ना था, वन में बढ़ना था, दूसरे दिन चल दिए। तो 4 ब्रह्मचारियों को भरद्वाज जी ने दिया रास्ता दिखाने के लिए। तो उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद वो चारों लौटे, तो निषाद राज को ही भगवान ने लौटा दिया, बहुत आग्रह करके कि आप जाइए गांव पर। उसके बाद भगवान चले। प्रयागराज के संगम को भी भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और वर मांगा। वर मांगा कि भरत कुशल सेवा है, भरत को कोई दुख न हो। और सीता जी ने भी प्रणाम किया। तीनों ने जमुना जी को प्रणाम किया। इसके बाद जो भगवान चले प्रयागराज से, तो कुछ दूर आने के बाद जमुना जी पड़ती थी रास्ते किनारे किनारे दाहिने भाग में, तो जमुना जी को प्रणाम किए। जमुना ही किन्ह प्रणाम बहोरी। सीता जी के साथ दोनों भाई बड़े आनंद से चले। रवि तनु जा कई करत बड़ाई। भगवान श्री राम भगवान सूर्य की पुत्री जमुना जी की बड़ाई करते हुए चल रहे थे। पथिक अनेक मिला ही मग जाता, कहीं से प्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अस हृदय हमारे। जाते समय रास्ते में अनेक पथिक मिलते थे, उधर से लौटते हुए, इधर से भी जाते हुए, कुछ लोग तेज जा रहे थे, कुछ लोग उधर से आ रहे थे। पथिक अनेक मिला ही मग जाता, कहां ही सप्रेम देख दो भ्राता। दोनों भाइयों को देखकर आपस में अत्यंत प्रेम से कहते थे, भगवान श्री राम से भी कहते थे, लक्ष्मण जी से भी कहते थे, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। आपके देह में, आपके श्री विग्रह में सभी राजा के चिन्ह हैं। चरण चिन्ह देख करके कहते थे, आंख की बनावट, चेहरा, हाथ, सब कुछ। अगम पंथ गिरी कानन भारी, तेहिमा साथ नारी सुकुमारी। आप जा रहे हैं, लग रहा है वन में जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं। एक तो रास्ता अगम्य है, बड़े बड़े गिरी हैं, पर्वत हैं, और बड़े भारी गहन वन हैं। आप कैसे जाएंगे? अपने आप पूछते थे, आप कैसे जाएंगे? और साथ में सुकुमारी लड़की है आपके साथ, आप कैसे वन में जाएंगे? इस तरह से कहते जाते हैं। करी के हरी बन जाई न जोई, हम संग चल ही जो आयस होई। वन में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, हाथी रहते हैं, उनको जब देखेंगे तो उनकी तरफ देखना भी कठिन होगा। आप कैसे निर्भय जा रहे हैं? हम संग चलेंगे, आप जहां तक जाएंगे हम साथ में पहुंचा करके आएंगे। कई पथिक लोग लग जाते थे, अब उनको घर जाने की इच्छा नहीं होती थी, अब ये अपना गंतव्य भूल जाते थे। कहते थे हम चलते हैं, हम 10-20 आदमी आपके साथ चलेंगे और आपको जहां जाना है वहां पहुंचा करके हम लौट आएंगे। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर बहोरी तुम ही सिर नाई। आप जहां तक जाएंगे हम आपको पहुंचाए आएंगे और फिर हम आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जल नयन, कृपा सिंधु फेर ही ति नहीं, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार प्रेम बस पूछते थे, आग्रह करते थे भगवान से, उनकी आंखों में आंसू भर जाता था और शरीर पुलकित हो जाता था, लेकिन कृपा के समुद्र श्री राम उनको परम मृदु और विनीत वचन बोल करके लौटा देते थे। नहीं, आप जाइए, घर में जरूरत है, जाइए, नहीं हमारे भाग में तो यही लिखा है, कोई बात नहीं, आप कितना दिन रहेंगे साथ में, आप लौट जाइए। भगवान इस तरह बोलते, बहुत मृदु बोलते थे, नहीं हमें कष्ट नहीं होगा, धनुष बाण है ना मेरे साथ, हमें सिंह से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है, और कोई एक दो दिन थोड़े रहना है, 14 साल रहना है, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप लौट जाइए, लौट जाइए, बहुत दूर आ गए, बच्चे जो रहे होंगे घर पर, जाइए जाइए। एक तो सबके हृदय में अंतर्जामी परमात्मा के रूप में भी श्री राम ही है, और ऊपर से मृदु वचन, तो किसी न किसी तरह से लौटा देते थे।
जयपुर गावा बस ही माग माही, तीन ही नाग सुर नगर सिंहाही।
भगवान श्री राम के उस रास्ते में, वनगमन में, जो भी गांव और नगर रास्ते में पड़ते थे, मतलब उस रास्ते कुछ दूर ऐसे, भगवान गांव में जाते नहीं थे, गांव से बाहर होकर जाते थे, प्रायः गांव को अपने दाहिने छोड़ते थे, क्योंकि गांव में अनेक देवता भगवान के मंदिर होते हैं, तो अपने दाहिने छोड़ते जाते, तो उसको कहते हैं मगमाही। जयपुर गांव बसही मगमाही, तीन ही नागसुर नगर सिंहाही। उन गांवों को देख करके और नगरों को देखकर देवता नाग आदि के जो लोक हैं, नगर हैं, वे सब सिंहा रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, उनके भाग्य की सराहना कर रहे थे, ये कितने भाग्यशाली हैं, देवराज इंद्र का नगर किस काम का जिसमें भगवान कभी गए नहीं, या नागलोक है, या वरुण जी का विभावरी है, कुबेर जी का अलकापुरी है, सब किस काम के जहां भगवान नहीं गए। और जिस गांव के पास भगवान जा रहे हैं, जिस नगर के पास भगवान जा रहे हैं, उनकी चरण धूलि पड़ रही है, तो वो धन्य है, कही सुकृति कही घड़ी बसाए, किस महाभाग्यशाली ने इनको बसाया था, इस गांव को, इस नगर को बसाया, और किस शुभ घड़ी में बसाए गए थे, जहां पर ब्रह्म परमात्मा भगवान पैदल चल करके आ रहे हैं। धन्य पुण्यमय परम सुहाय, परम पावन परम पुण्यमय ये नगर और गांव है, परम सुंदर।
जहां जहां राम चरण चल जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही।
जहां जहां राम के चरण चले जा रहे हैं उसके समान अमरावती नहीं है। अमरावती जहां इंद्र रहते हैं, देवताओं की नगरी, कुछ भी नहीं है उस गांव के समान, या उस स्थान के समान, कहां कहीं भी जहां भगवान श्री राम के चरण कमल चले जा रहे हैं उसके समान अमरावती नहीं है।
पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनही सराह ही सुरपुरवासी।
वे लोग धन्य हैं, पुण्य के समुद्र हैं, जो श्री राम के रास्ते के निकट में निवास पाए हैं। ऐसे लोगों को देख करके उनकी सराहना करते हैं देवता लोग, सुरपुरवासी। ऐसे बसने के लिए तो सब जगह आदमी बसा हुआ है, लाखों गांव हैं, शहर हैं, लेकिन वास्तव में भगवान से जिसका संपर्क है वही धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस शेष करते हुए कहते हैं कि धन्य से देश जहां सुरसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। धन्य है वह देश जहां गंगा बहती है। देश का अर्थ है स्थान, प्लेस, जहां जहां गंगा जी बही हैं वो स्थान धन्य, धन्य।
इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका एक पाटलिपुत्र शहर भी धन्य है। लोगों को गंगा स्नान का सौभाग्य मिलता है, गंगा जी का जल मिलता है, पावन कर दिया गंगा जी ने। भगवान के चरण रज से संबंधित होने के कारण गंगा जी की महिमा है। धन्य सो देश जहां सुरसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, और धन्य है वह नारी, धन्य है अभाग्य उसका जो पति से प्रेम करती है पतिव्रत अनुसारी। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही, जहां के निवासी आंख भर करके राम का दर्शन कर रहे हैं रास्ते में, मेरे परम धन्य है धन्य। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, जिस राम का नाम भी मुख पर आना मुश्किल है, दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, ऐसे श्री राम रास्ता चलते हुए जिनके बिल्कुल निकट से गुजरते हैं और जो श्री राम को आंख भर करके देखते हैं, भरी नयन निष्पलक नेत्र से भगवान को देखते हैं नख से सिख तक, उनके बाह को, उनके अलक को, उनके मुख को, उनकी नासिका, उनकी छाती, उनके चरण कमल, सब कुछ को जो देखते हैं, कितनी सौभाग्यशाली है। जेहि तर तर प्रभु बैठे ही जाई, कर ही कलप तर तासु बढ़ाई, जिस वृक्ष के नीचे श्री राम थोड़े देर के लिए जाकर के बैठते हैं रास्ता में थकने के कारण, तो उस वृक्ष की बड़ाई देवलोक के कल्प वृक्ष करते हैं। कर ही कलप तर तासु बढ़ाई, तासु बढ़ाई, धन्य है वो वृक्ष जिसके नीचे भगवान बैठे, नहीं तो इस स्वर्ग में जन्म लेकर के हम क्या कर रहे हैं। इस तरह सीखना चाहिए, किसी व्यक्ति का तभी जीवन धन्य है जब वह भगवान को अपने हृदय में बसावे, या भगवान का भक्त बने, तब धन्य है, नहीं तो जन्म क्या करेगा। जन्म तो स्वर्ग में हुआ है और वो भी जाति क्या है, कल्प वृक्ष। स्वर्ग में ये सब बबूल वगैरह नहीं होते हैं, कांटे कांटों का एक भी वृक्ष नहीं है। हम लोगों के भारतवर्ष में भी ये जो फालतू वृक्ष उगाए हैं, ये सब बाहर से लाए गए हैं, बाहर से लाए गए हैं, जैसे बेसर में, बेसर को बहाया, ये पहले नहीं था, तो पता नहीं किस भारतीय ने इस कल्प वृक्ष को विदेश से लाया। और एक बबूल कांटे का होता है, सड़क पर जहां तहां बस यही भरे पड़े। और आश्चर्य है कि आजकल के लोग आमों को काटते जा रहे हैं, कई कई बगीचा पहले के विशाल विशाल लगे हुए थे, सब काट दिए गए, करते जा रहे हैं, पृथ्वी को सीमेंट से मढ़ते जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद उत्पादन के लिए जमीन नहीं रहेगी पर्याप्त। बहुत दुर्भाग्य की बात है। भगवान श्री राम चल करके पेड़ के नीचे बैठते, स्वाभाविक मग में रास्ते में थकावट होती है और कभी कभी पथिक के वृक्ष की छाया में विश्राम कर लेते हैं, लेकिन जो ये हाईवे बना रही है सरकार, पैदल चलने वालों पर कोई विचार ही नहीं है कि आदमी पैदल भी चलेंगे, केवल ट्रक बस चलेंगे। और आसपास के जो दोनों तरफ के वृक्ष थे, इनको काट करके उखाड़ करके ढहाकर समाप्त कर दिया। तो हिरण्यकश्यपु ऐसी आज्ञा दिया था कि उपजीव वृक्षों को काट दो, सब गौओं का वध करो, हिरण्यकश्यपु का आदेश है, भागवत में लिखा हुआ, साधुओं को मारो, ऋषियों की हत्या करो। तो भगवान नृसिंह देव आकर के उस खल को समाप्त किए, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दी। देखिए प्रकट क्या क्या अधर्म हो रहा है। मनुष्य जीवन में मनुष्य की उपजीविका के रूप में भगवान ने पशुओं की सृष्टि की है और वृक्षों की सृष्टि की है, ये केवल दूसरे के लिए जन्म दिए गए। वृक्ष जीने के, मनुष्यों के जीने में सहायता करता है, लकड़ी द्वारा, फल द्वारा, छाया द्वारा, किस तरह से घर बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। और पशु दूध देते हैं, दही देते हैं, घी देते हैं, कोई मनुष्य से तो कोई घी दूध निकल नहीं सकता है,
ये सब पशुओं द्वारा ही निकल रहा है,
लेकिन पशुओं की इतनी बेहद हत्या जो हो रही है, तो दुनिया में दूसरों के पेट में पशु भेजे जा रहे हैं, कसाई खाना में काट काट करके कंटेनर में बंद करके एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, दुनिया भर के मांस खाने वालों को सप्लाई की जा रही है, मांस बेचने वालों में भारत सबसे बड़ा है, मांस की सप्लाई की जा रही है, पशु कटते जा रहे हैं कटते जा रहे हैं कटते जा रहे हैं, और इतना निर्मम हत्या की जाती है। पहले तो उनको पकड़कर जहां तहां से खरीद करके जो लोग ले जाते हैं, तो एक ट्रक में मान लीजिए अगर 6-7 पशु ठीक से जा सकते हैं, ये राक्षस लोग उसमें 10-12 पशु को ठूसते हैं, उससे भी अधिक, जिसमें वो केवल खड़ा रह सकते हैं, खड़ा भी बहुत मुश्किल से रहते हैं, और कई सौ किलोमीटर में इधर उधर ले जाते हैं, उतारते हैं। उतारने के बाद स्लाउट होने से पहले, कटने से पहले वे 4 दिन उसको भोजन नहीं देते, और अंतिम दिन निकालते हैं किसी बाउंड्री में जहां उसका अंतिम श्वास होता है, थोड़ा सुख से सांस लेता है। कितना दुखी प्राणी जो मनुष्यों के लिए बनाया गया, मनुष्यों की जो सेवा करता रहा जिंदगी भर, गोबर द्वारा, दूध द्वारा, या अपनी शक्ति द्वारा फल खींचना या तांगा खींचना, जो भी करना है किया, और ऐसे पशुओं को इस निर्ममता के साथ मनुष्य के आकार में राक्षस सब मारते जा रहे, कहलाते हैं मनुष्य, लेकिन काम राक्षस का कर रहे हैं। राक्षस भी इतना दुख नहीं देते हैं पशुओं के वास्ते, इतना दुख नहीं देते, और वहां पर पहुंचाने पर कसाई खाने में, यांत्रिक कसाई खाने हैं वहां पर, वो खोलते हैं अंतिम सांस लेने के लिए, पानी पिलाते हैं, कई दिन के बाद पानी पिलाते हैं, पानी पिला करके उसके बाद उस भवन में ले जाते हैं हाँक हाँक करके, जहां एक साथ कई पशुओं के वध की व्यवस्था रहती है, और वहां पहुंचने पर चारों पैर को नीचे से ही वहां मशीन लगी हुई है जो आकर के पकड़ लेती है चारों पैरों को, वो हिल भी नहीं सकता, खड़ा रहता है, और खड़ा रहने के बाद उसके बाद बहुत ज्यादा गर्म पानी जिसे फफोले पड़ जाते हैं, ऐसे गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है उस पशु पर, उसके चमड़े में खून का संचार हो जाए कोमल करने के लिए, जीवित है। तो भगवान ने जिन पशुओं का निर्माण ही किया है कि मनुष्यों की जीविका में सहायता करें, तो अपने जीविका में सहायक पशुओं की दुर्दशा इस तरह से करते हैं। बहुत गर्म पानी से का छिड़काव करते हैं, मशीन द्वारा चारों तरफ से मशीन ही छिड़काव करते हैं, और इसके बाद छड़ी से उसके शरीर पर पिटाई की जाती है जिससे कि रक्त चमड़े में आ जाए, वही मशीन से पिटाई की जाती है, मशीन की छड़ी बनी होती है, बड़े बड़े कसाई खानों की बात मैं कह रहा हूं। इस तरह से उसके चमड़े को कोमल बनाने के लिए तो गर्म जल का छिड़काव होता है, उसके बाद पीटते हैं छड़ी से, बहुत तीखी छड़ी से, तो उससे चमड़े में खून आ जाता है, और इसके बाद एक मशीन आती है जो उस पशु के गर्दन को, पूंछ को और चारों पैर को अलग कर देती है। एक दूसरी मशीन होती है उसको टांग लेती है, अभी पशु जीवित है, और एक मशीन आती है जो सीधे चमड़े को उखाड़ लेती है, पूरे चमड़े को अलग डाल देती है, और इसके बाद एक मशीन दूसरी होती है जो उंगली की तरह होती है और उसके मांस को खखोर खखोर करके चारों तरफ से तुरंत ले लेकर के उसे कंटेनर में बंद किया जाता है, टीम में जैसे तैसे लेकर के बंद किया जाता है, उसका खून अलग जगह इकट्ठा किया जाता है, और वे मांस के कंटेनर बाहर भेजे जाते हैं और उसका पैसा कमाया जाता है, वैसी कमाई को भारत में लोग खा रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। ये मनुष्यों की बुद्धि है, जो जीविका चलाने के लिए बनाए गए उन्हीं को मार मार करके मनुष्य इस तरह से खा रहा है। और वृक्ष भी जो मनुष्यों को सहायता देने के लिए उगाए जा रहे हैं, प्रकृति के महान दान हैं, ऐसे वृक्षों को खत्म करते जाना जहां तहां विकास के नाम पर, एक्सटेंशन के नाम पर, यह नाम पर, वह नाम, और फल आदि कितने महंगे होते जा रहे हैं देख रहे हैं। वृक्षों के द्वारा फल मिलता है, यदि चारों तरफ वृक्ष हो, सब लोग वृक्ष लगावे, उगावे, संवर्धन करे, तो कभी महाकाल में, दुष्काल में भी मनुष्यों का भोजन चल जाएगा, और पशु रहे तो उसके द्वारा भी चल जाएगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, कभी किसी समय यदि तेल मिलना बंद हो गया किसी महायुद्ध के कारण या किसी तरह से, तो ये ट्रैक्टर आदि रहते हुए भी खेती नहीं हो पाएगी, खेत जोते बिना आदमी मर जाएंगे खाने बिना, इसी तरह से जो इस तरह पशुओं की हत्या कर रहे हैं और वृक्षों की हत्या कर रहे हैं, तो मनुष्य के सिर पर आ जाएगा तुरंत, वो आने वाला है समय। इसलिए कम से कम व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमारे चलते पशु का वध न हो, हम दो की सेवा करेंगे, चार की सेवा करेंगे, जितना समय हम करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे के इस पशु वध में सहयोगी नहीं बनेंगे। किसी भी तरह से अगर इस तरह से पशुओं के उत्पादन को व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे, उनके शरीर का चमड़ा या किसी तरह से, तो इसका मतलब है कि वह उसके वध में सहायक हो रहा है, क्योंकि वध करने वाले व्यापार की ही दृष्टि से वध करते जा रहे हैं। कई प्रकार से हिंसक चीजें मनुष्य जीवन में उपयोग करता है, उसे बचना चाहिए। तो मैं, मुझे ये बात यहां याद आ गई कि जब भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे बैठ रहे हैं और उस वृक्ष की प्रशंसा कल्प वृक्ष करते हैं स्वर्ग में, तो सिद्ध होता है कि पहले के रास्ते में भी वृक्ष भरे पड़े होंगे सब समय, अभी तो इधर भी हाल में ही भरे पड़े थे, अब ज्यादा वृक्षों की कटाई होती जा रही है। तो भगवान श्रीराम जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे उसकी बड़ाई कल्प वृक्ष करते थे, पर श्रीराम पद पद्म परागा मानत भूमि भूरि निज भागा, भगवान श्रीराम के चरण पद्म को छू करके भूमि अपने को परम भाग्यवती मानती थी, मानत भूमि भूरि निज भागा, भगवान श्रीराम का चरण कमल इस पृथ्वी का श्रृंगार है, अलंकार है। जब भगवान अवतार लेते हैं और इस पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी में उत्पादन देने की भी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, ये सुखी रहती है और जीवों का पालन ठीक से करती है। छाह करहि घन विबुध गना बरसहि सुमन सिंहाई देखत गिरि बन बिहंग मृग राम चले मग जाहि। भगवान जब चल रहे थे तो उनके ऊपर बादल अपने आप छाया करते थे, छाता तानने की जरूरत नहीं पड़ती थी। छाह कर ही घन और विबुध गण देवगण बरस ही सुमन सिंहा, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे और वनवासी या रास्ते में रहने वाले लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। देखत गिरी बन विहंग मृग राम चले मग जान, भगवान श्री राम पहाड़ देखते हुए, वन देखते हुए मतलब वृक्षों को देखते हुए, तथा पक्षियों को और पशुओं को, मृग आदि पशुओं को देखते हुए चले जा रहे थे। देखत गिरि वन विहंग मृग राम चले बन जा, इस प्रकार भगवान कृपा दृष्टि डालते हुए चले जा रहे थे। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकसहि जाई। सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम जब किसी गांव के निकट से गुजरते थे, आते थे, तब सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चल ही तुरत गृह काज विसारी। ये सुनते ही कि दो अद्भुत लड़के आए हैं और एक स्त्री साथ में है, तो गांव के बालक, वृद्ध, नर और नारी अपना अपना काम और घर दोनों छोड़कर तुरंत दौड़ते थे। इतना सुंदर भगवान है, इतना आकर्षक है कि उनको देख करके दूसरा कोई केवल कहता था तो काम धंधा छोड़कर के लोग चले जाते। कोई भी आधा काम हुआ है, चौथाई काम हुआ है, ये शुरू ही करें तब तो चल दे। कोई खाने बैठा होता था तब तो खाना छोड़ करके भागता था। वो कहते थे कि वो तो दूर निकल जाएंगे, तो खाना छोड़ करके या और कोई घर का काम धंधा छोड़ करके, घर छोड़ करके, उसमें ताला वाला लगाने की जरूरत नहीं, ये सब चल देते। राम लखन सिय रूप निहारी, ताई नयन फल हो ही सुखारी। जो आते थे तीनों के रूप को देखते थे, राम लखन सिय रूप निहारी। निहारी का अर्थ एक तक देखते थे खूब अच्छा से, और पाई नयन फल हो ही सुखारी, नेत्र मिलने का फल पाकर तुम लौटते सुखी हो जाते। ये आंख वास्तव में ब्रह्मा जी ने बनाया है भगवान राम को देखने के लिए, और यदि डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं तो मंदिर में जा करके प्रतिमा के रूप में उनको देखना चाहिए, श्री विग्रह के रूप में भगवान को देखना चाहिए। आदमी जहां जाता है वहां तो कुछ न कुछ देखता ही रहता है, तो 24 घंटे में कुछ समय नियम बना करके भगवान को देखना चाहिए मंदिर में जा करके, या अपने घर में भी फोटो टांग करके भगवान राम को देखना चाहिए। यह है नेत्र का फल। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। दोनों भाइयों को देखकर लोगों की आंखें सजल हो जाती थी और शरीर पुलकित हो जाता, मग्न हो जाता। बरनी न जाई दशा तीन केरी, लही जनु रंकन सुर मन घेरी। इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे, कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता था कि जैसे रंक दरिद्रों को चिंता मणि की ढेरी कहीं मिल गई हो, जो सोना से भी कई गुना महंगा होता है। चिंता मणि जो देवताओं के लोक में चलती है मणि, सुर मणि कहते हैं उसको, इच्छा के अनुसार और भी धन देने वाली, तो चिंता मणि की ढेरी कहीं हो और दरिद्रों को लूटने के लिए मिल जाए, फिर किया जाए कि लूटो जो जितना ले जाए, उनको जो सुख होगा इससे भी ज्यादा सुख राम और लक्ष्मण को देख करके हो रहा था लोगों को। इतना भगवान सुंदर है और आनंद घन है कि उनको देख करके जिस आनंद में सराबोर हो जाता था। लहिजन रंकन सुरमणि ढेरी, देवताओं की मणि की ढेरी कहीं उनको मिल जाए, इस तरह से खुश होते। एकन एक बोली सिख दे ही, लोचन लाहू ले हूं छन यही। एक दूसरे को कहते कि चल दे, चल चल, देख 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 देख, आंख का फल क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो, इस तरह से कहते थे, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। एक नये नमग छबिभूरयानी, राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। और कुछ लोग राम को देखने में इतना तल्लीन थे कि भगवान राम ऐसे जा रहे हैं तो बात करते हुए, तो कुछ लोग पीछे मुंह उनके तरफ मुंह करके पीछे जा रहे थे, कुछ लोग खेत में इधर उधर जा रहे थे, तो राम को देखते हुए जा रहे थे, रास्ता नहीं देख रहे थे, पैर कहाँ पड़ रहा है, कैसे भगवान का मुख निहारते हुए ही चल रहे थे। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जा ही संग लागे। और संग जाने ही लगते थे, चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो या स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे भी भगवान राम को देखते चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। भगवान थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, ये लोग पूरा अमृत पी ले, भगवान के सौंदर्य सुधा को पी ले, इसके लिए भगवान आनंद से जा रहे थे धीरे धीरे। और भगवान के साथ जाते ही थे, जाते ही थे, एक नए नमग छवि उरयानी। और कुछ ऐसे थे जो भगवान को अपने नयन के मार्ग से भर करके हृदय में अनाख बंद करके देखने लगते थे, इसको सच्चा ध्यान कहते हैं। कि अब आगे देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको अपने हृदय में बंद कर देख रहे सकी नयना में भरी भरी फेर नहीं राम जी जनकपुर आई। वहां भी इसी प्रकार का वर्णन है रामचरितमानस में, कोई कोई सखी भगवान को देख करके एकदम मग्न हो गई। स्वयं सीता जी एक सखी व्यंग करती है, अरे आंख भर करके देख लो इस लड़के को, बाद में दुर्गा जी का ध्यान करना। इस तरह से कोई सखी कर व्यंग कर रही है, जानती है कि राम को ही हृदय में देख रही है। एक देखी बट छाह भल दास मृदुल त्रिन पार, कहीं गवाई छिन कश्रम गवन भय बही की प्रात। कोई कोई लोग आगे बढ़ करके किसी सुंदर बट वृक्ष की छाया में घास या पत्ता बिछा देते थे, कहेंगे यहां रुकने के लिए। तो भगवान जब पहुंचते थे तो उनसे कहते थे कि आप थोड़े समय के लिए यहां रास्ते की श्रम गवाइए, आप विश्राम कर लीजिए और आज चले जाइए अथवा कल सवेरे जाइएगा। आज रात को रही, हम लोग रात को यहीं रहेंगे, पेट्रोमैक्स जला करके सब लोग हम लोग यहीं रहेंगे, इसी वृक्ष के नीचे रहेंगे, आप यहीं रहिए रात को। कहां ही गवाई ये छिनक श्रम गवर्नब अब ही की प्रार, वास्तव में क्यों नहीं वे देवताओं से बढ़ करके भगवान के साथ इतने निकट से बात करने को मिल रहा है, बैठने को देखने को, तो अवश्य देवराज इंद्र या ब्रह्मा शिव आदि से भी ये बड़े हैं, वास्तव में सौभाग्यशाली भगवान के साथ इतना निकट का व्यवहार। कहते अच्छा होगा आप प्रातः काल जाइए, और यदि आप नहीं माने तो आज भी तो जा सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कल जाए, सवेरे चले जाए। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैये नाथ कहि मृदु बानी। और कोई कोई कलश में, मिट्टी के कलश में बहुत सुंदर ठंडा पानी भर करके लाते हैं और ला करके कहते हैं आप इससे आचमन कर लीजिए और इसको पी लीजिए कुछ देर के बाद। अचैये नाथ कहि मृदु बानी, आप पी लीजिए। दूसरे भक्त लोग भगवान के अर्चा विग्रह को रोज पानी देते हैं, नैवेद्य देते हैं, पर भगवान खाते तो हैं जरूर भक्त के श्रद्धा के अनुसार, लेकिन इतना सुंदर बात भगवान से डायरेक्ट कहना है पानी पीजिए, और भगवान पीते हैं लेकर के। अचैये नाथ कहि मृदु बानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेक। भगवान श्री राम एक तो कृपा मूर्ति है और सुंदर शील के निधान है, उनके प्रिय वचन को और प्रीति को देख करके वे उस बरगद के नीचे चलने लगते हैं, ठीक है चलिए चलिए, और वहां बैठते हैं और पानी पीते हैं, पहले कुल्ला करके कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। सीता जी को देख करके कहते हैं तो रुकते हैं, तो सीता जी को जब देखते हैं भगवान तो श्रमित है, पसीने की बूंदे मुख को और सुंदर की हुई है, तो सीता जी का थकना देख करके भगवान ने सीता जी को संकेत किया, तब थोड़ा बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ा बैठते हैं। जानी श्रमित सीए मन माही, घड़ी का विलंब किन्ह बट छाए। तो कुछ घड़ी तक अथवा एक घड़ी तक 45 मिनट भगवान उस वृक्ष के नीचे रुकते हैं। अथवा हो सकता है दोपहर होगा तो कुछ घड़ी रुके, एक घड़ी 45 मिनट की होती है। या एक घंटे की, हमने जोड़ा है 45 घड़ी की, क्योंकि 32 घड़ी दिन रात होता है। तो घड़ी का विलंब किन बट छाई, कम से कम एक घड़ी तो विलंब किया भगवान ने, अथवा कुछ घड़ी किया। घड़ी का विलंब किन बट छाई, मुदित नारी नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। अब नारी और नर, लड़के लड़की या वृद्ध युवती, नारी या नर, बच्चे सभी एक टक चारों ओर से भगवान को देख रहे थे। भगवान श्री राम वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सीता जी कुछ दूर पर बैठी हैं, लक्ष्मण जी भगवान के साथ हैं, खड़े हैं, लक्ष्मण जी नहीं बैठते थे, तो लोग एक टक भगवान को देखते रहते, एक तक देखते थे चारों तरफ से। भगवान सौंदर्य के अनंत निकेतन है। एकटक सब सोहि चंगोरा, राम चंद मुख चंद चकोरा, मुदित नारी नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। सब ऐसे देख रहे थे भगवान राम के मुख चंद्र को, जैसे चकोर चंद्रमा को देखे चारों तरफ से। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। भगवान श्री राम के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ओह, उस समय अगर वीडियो कैमरा रहा होता, भगवान की उस छवि को आज भी देखा जा सकता था। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में ऐसा लिखा है कि वीडियो से कम नहीं है। वीडियो तो सड़ गल हो सकता है, लेकिन ये सड़ने गलने वाला नहीं। नवीन तमाल के वृक्ष के समान सांवले वर्ण के श्रीराम ऐसे सुंदर है कि देखत कोटि मदन मनमोहा, कोटि कोटि कामदेव का मन भी लुब्ध हो जाएगा भगवान ऐसे। दामिनी वरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। और लक्ष्मण जी बिजली की चमक के समान गोरे हैं। दामिनी वरन लखन सुठनी के, सुठिमन सुष्ट, अतिशय सुंदर लक्ष्मण जी हैं, पर विद्युत की चमक के समान सुंदर है। नख सिख सुभग भावते जी के, नख से सिख तक अत्यंत सुंदर हैं, जी को बहुत अच्छा लग रहे हैं। जैसे जैसे गांव के लोग देख रहे हैं भगवान को, वैसे वैसे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। मुनि पट कटिना कसे तू नीरा, सोह ही कर कमलन धन तीरा। और कमर में मुनि पट बांधे हैं। मुनियों के पहनने के लिए जो उचित वस्त्र होता है, बहुत मोटा पुराना जैसा भी, उसको बांधे हैं। और तुरीण कसे हैं, तरकस, और हाथ में धनुष और बाण शोभा दे रहे हैं। तुरीण में, तरकस में तो बाण है ही, एक हाथ में भी बाण है। वो जब खड़े, जब वहां है तो हाथ में ले लिए हैं धनुष, बैठते समय भगवान से जाए, बैठते समय धनुष को ऐसे नहीं रखे, रख लिए, और एक हाथ में तीर है। सजग भगवान सावधान है, जंगल में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है बाढ़ की। कर कमलन धन तीरा, जटा मुकुट शीर्ष नि सुभग, शीर्ष पर सुंदर जटा है। उर भुज नयन विशाल, छाती भुजा और आंखें विशाल। शरद परब विधु बदन बरा, लसत स्वेद कन जाल। शरद काल की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जैसा सुंदर खिला हुआ मुख है और उस पर परिश्रम की बूंदे बहुत सुंदर लग रही है। मुख पर रास्ता चलने से थकावट हुई है तो कुछ पसीना उभरा हुआ है, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, लेकिन ग्रंथकार कहते मैं क्या कहूं, मेरी वाणी में शक्ति नहीं है कि मैं इस सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति तोरी, शोभा समुद्र के समान है और मेरी बुद्धि तो एक छोटे से कटोरी के समान है, क्या मैं वर्णन करूं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत मोर मति थोरी, राम लखन सिए सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग चित मन और मति लगा करके देख रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी का मन इधर उधर नहीं जा रहा है, केवल सौंदर्य देखने में है। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हूँ मृगी मृग देखी दिया से। नारी और नर प्रेम के पियासे हैं, सौंदर्य सुधा और माधुरी को पी रहे हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। सिद्धिया को देख करके कभी कभी हरिण और हरिणी दिखते रहते हैं, न उनको सुंदर लगता है। सीय समीप गामतीय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। सीता जी के निकट गांव की स्त्रियां जाती हैं, पुरुष लोग सीता जी से बात नहीं करते थे, देखते थे सुंदरता लेकिन बात करने नहीं जाते थे, देखिए सामाजिक मर्यादा। तो सीता जी थोड़ी दूर पर बैठी हैं तो गांव की स्त्रियां पहुंचती हैं वहां पर, स्वर्गे परमा प्रीति, स्त्री को देखकर स्त्रियां बात करेंगी, तो छोटी छोटी बच्चियां लड़कियां या माता जी या कोई वृद्ध माता जी, ये सब जाती हैं, घेर लेते हैं सीता जी को। सी समीप ग्राम तीय जाही, पूछत अति स्नेह सकता है, अति स्नेह के कारण संकोच हो रहा है सीता जी से पूछने में, और पूछना भी चाहती हैं। पिता का नाम पूछती हैं, गांव का नाम पूछती हैं, और सब पूछती हैं, और पूछना चाहती हैं कि ये जो दोनों हैं ये आपके क्या लगते हैं। मुख्य बात ये है, ये मुख्य विषय ये है स्त्रियों का, स्वाभाविक उत्कंठा हो रही है लेकिन संकोच हो रहा है पूछने में। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। बारंबार सीता जी के चरण में प्रणाम करती हैं, तो छोटी छोटी बच्चियां हैं या ज्योति स्त्रियां वो प्रणाम कर रही हैं, वृद्ध माताएं नहीं प्रणाम कर रही हैं, या ये दीनहीन है तो रानी समझ करके वो भी प्रणाम कर रही हैं, आकर के सीता जी के चरण में बार बार पड़ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं और पूछती हैं, संकोच से पूछती हैं। राजकुमारी विनय हम करही, तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। हम इतना जानते हैं कि आप किसी राजा की बेटी हैं, तो स्त्री स्वभाव होने से हम आपसे डरती हैं पूछने में, हम कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। तो सीता जी चुपचाप रह जाती हैं, उन्होंने कहा भी नहीं कि पूछिए या न मना किया। ये कहती है स्वामिनी बिन अभिनय समब हमारी, बिलगन मानव जानी गवारी। हे स्वामिनी, हमारे अभिनय को, ढिठाई को आप क्षमा कीजिए, और हम लोगों से कोई गलत बात निकल जाए तो हमें क्षमा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे हमको। आप यही जाने, हम तो गांव की हैं और वो भी पहाड़ी गांव की, कोई हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ नहीं जानती है, तो हम कुछ पूछ रही हैं तो आप रंज नहीं होंगी, उत्तर दें। तो सीता जी ने मानो ऐसे केवल मुख मुद्रा से सूचित किया, ठीक है आप पूछिए। तो राज कुंवर दौ सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे राजकुमारी, ये जो दोनों है, लगता है कि सोने में जो पीत दीप्ति आई है और मरकत मणि में जो नील वर्ण की दूति आई है, इन्हीं से आई है, इन्हीं दोनों से आई है। इसका मतलब है कि मरकत मणि की इनकी जो कांति है नील वर्ण की, उसकी एक कणिका भी मरकत मणि में नहीं है। यह सोने में जो येलो कांति आई, पीली कांति आई है, दीप्ति आई है, वह इस लड़के से आई है, अर्थात इसके आगे सोना कुछ नहीं है, सोना की चमक कुछ नहीं है। तो हम यही पूछती हैं कि ये दोनों तुम्हारे कौन है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। इनका रूप कैसा है स्त्रियां वर्णन कर रही हैं। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान मुख है और शरद कालीन कमल के समान इनके नेत्र। शरद सरवरी नाथ मुख और शरद सरोरुह नयन, अद्भुत है। कविता की दृष्टि से बहुत रसमय है सब कुछ। पूछती है, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। ये करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले ये दोनों आपके क्या लगते हैं। अब सीता जी किस तरह से सुंदर मर्यादा पूर्ण और प्रेम पूर्ण उत्तर देती है ये सीखने लायक। ऐसा नहीं झट से कह दे कि वो सामने हमारे मिस्टर हैं और ये छोटे हमारे क्या ब्रदर इन लॉ हैं क्या है। ऐसा नहीं कह दिया, कैसे बोलना चाहिए एक सभ्य सुशील पत्नी को। इस सीता जी की इस बोली से पता चलता है व्यवहार। सुनी स्नेह मैं मंजुल वाणी, सखुची सी मनमोह मुस्कान। उनके स्नेहमय और बहुत सुंदर मधुर वाणी को सुनकर सीता जी सखुची, सखुची का यहां अर्थ है कि स्त्रियों पर देख रहे थे जिससे थोड़ा नीचे सिर कर ली और घूंघट को भी थोड़ा सा की बढ़ाई, उसको कहते सखुची, और मन में मुस्कुराई। ती नहीं बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। स्त्रियों को देख करके धरनी को देख रही है, फिर पृथ्वी को देखने लगी संकोच से। स्त्रियों ने जो प्रश्न किया तो उनके तरफ कभी देखती हैं तो उनको फिर देखकर नीचे मुंह कर ली और दोनों संकोच में पड़ गई। यदि नहीं बताती हूं तो इनको दुख होगा और बताने में संकोच हो रहा है। आजकल जैसे निर्लज्ज और मुंहफट व्यवहार नहीं, अपने पति हैं, अपने देवर हैं, साथ साथ अयोध्या से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जा रहा है ये कौन लगते हैं, तो किस शालीनता के साथ, किस सभ्यता के साथ उत्तर दे रही है, ये नीचे मुख कर ले, दोनों संकोच में पड़ गए। लेकिन फिर बोली, सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पीकवैनी। सीता जी के आंख और बोली का वर्णन विशेष किया जा रहा है। जब वो आंचल के भीतर मुख कर ली है और आंख से जब देख रही है, तो उस समय तुलसीदास जी को ध्यान हो रहा है कि सीता जी की आंख बालक मृग की आंख के समान लग रही है, चंचल आंख, बाल मृग नयनी। तो बोली, इस तरह से भगवान इस तरह लक्ष्मण जी की तरफ देख करके, थोड़ा इशारा करके, और वो बोल रही है और भगवान की तरफ भी थोड़ा देखा, इसलिए आंखों के मूवमेंट के कारण वो सभी तुलसीदास जी यह कह रहे हैं बाल मृग नयनी, सीता जी के नेत्र बाल हरिणी के नेत्र के समान, बाल मृग नयनी, हरिण के नेत्र में बिना काजल किए ही काजल रहता है, काला काला। कभी हरिण या हरिण ब्यूटी पार्लर में नहीं गए होंगे, कभी कुछ नहीं, लेकिन स्वाभाविक है उनकी आंखों में काजल लगा रहा है। बड़े दीर्घ है, बड़े नेत्र होते हैं, चंचल होते हैं। तो सीता जी के इन नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है, इसको ध्यान कहते। और बोली कितनी सुंदर, बोली मधुर वचन पिक वय में, कोयल के समान मधुर स्वर में बोली। सीता जी बोलती है, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये कहती है, ये जो अत्यंत सीधे स्वभाव के हैं, सुंदर हैं, जिनका शरीर गोरा है, ये हमारे छोटे देवर हैं। सीता जी कहती है, कितनी सुंदर भाषा है, इसका मतलब है कि बड़े देवर भरत जी हैं। आज के युग में किसी स्त्री को वर्णन करना होता तो भरत जी को तो देवर मानना छोड़ ही देती है ना, कहती कि ये हमारे देवर हैं, छोटे बड़े का वो नाम नहीं लेते, बड़ा भक्खर में जाए ये सोचती, जो हमारे पति को जंगल में डाल दिया। अति भरत जी नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी इस व्यवहार से आज कोई स्त्री कैसे कह सकती थी भरत जी को कि हमारे देवर, लक्ष्मण जी को लघु देवर कह रही है, नाम लखन लघु देवर मोरे, ये हमारे छोटे देवर हैं। इसका मतलब है कि हमारे बड़े देवर हैं अयोध्या। इस प्रकार की सुंदर भाव, इस प्रकार का सुंदर भाव और भाषा है। और जब अपने पति को बताना हुआ तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भौं करी बाकी। और इसके बाद जब अपने प्रीतम पति का परिचय देना हुआ तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने बदन चंद्र को आंचल से ढांकी, आंचल से ढांकी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर थोड़ा सा ढांकी। और प्रियतन चितई, अपने प्रियतम भगवान की तरफ देख करके भौं करी बाकी, और भौं से ही, इशारे से ही सीता जी ने कह दिया कि मेरे पति। प्रियतन चितई भौं करी बाकी, खंजन मंज तिरीछे नयननी, निजपति कहो तिनहि सिय शयनन। खंजन पक्षी के समान मंजू तिरछी चितवन से, आंखों से सीता जी ने इशारा से कह दिया कि ये मेरे पति, बोली नहीं, कही नहीं कि मेरे पति, आंखों के इशारे से ही समझ गए। स्त्रियों को जब ये कहा सीता जी ने कि ये हमारे पति हैं इशारे से, तो ये इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, तुरंत आशीर्वाद देने लगी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जन लूटी। खास करके जो गांव की नव विवाहिता स्त्रियां थी, इतनी खुश हुई कि कैसे लगा कि राजा के राशि को राजा ने खोल दिया रंकों को लेने के लिए, जितना ले जाना हो ले जा। रंकन राय राशि जन लूट, पूरा सरकारी कोष ही खोल दिया गया कि जितने गरीब हैं जितना ले जाओ। उस समय उनको कितनी खुशी होगी, नोट लूटने में नहीं, सोना हीरा आदि लूटने में जितनी सुख होगी। लूटने का मतलब उस राजा अलाउ कर दिया, ले जाओ। अगर उस तरह से लूटेंगे, चोरी करेंगे, तब तो उनको शक रहेगा, उतना सुखी नहीं रहेंगे, वो भय रहेगा कि हमको राजा पकड़ेगा। लेकिन इसमें खुशी का वर्णन है, इतना खुश हुए, इतना सुखी हुए देख के सुन करके कि ये इसका पति है और ये इसकी पत्नी है। लगता था कि राजा के खजाना को राजा ने छूट दे दिया रंकों को लूटने के। ये सब अभूत उपमा अलंकार है, कभी हुआ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसे छूट दी जाए तो उनको कितनी खुशी होगी, ऐसी खुशी गांव की स्त्रियों को हो रही है। तुरंत आशीर्वाद देने लगती है बड़ी बुरी भी, अति सप्रेम सी पाय परी बहु विधि देही आशीष सदा सुहागिन हो तुम जब लगी अही महिषीष। जब लगी मही अही शीष, आनंद से आशीर्वाद देती है, प्रणाम कर करके आशीर्वाद दे रही है। अति सप्रेम सीए पाय परी, सीता जी के पैर पर भी पड़ रही हैं और बहुविध दे ही आशीष, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। एक आशीर्वाद ये है कि सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही आशीष, जब तक यह भूमंडल शेष नाग जी के मस्तक पर है तब तक तुम सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा पति चिरंजीवी रहे। इस तरह से गांव की स्त्रियां आशीर्वाद दे रही, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही ऐसी। किसी विवाहिता स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, तुम्हारा सौभाग्य बना रहे, तुम्हारे पति जीवित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो स्त्रियां इस तरह से आशीर्वाद दे रहे, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही ऐसी, मही मैंने पृथ्वी, जब तक यह पृथ्वी, जब तक भूमंडल भगवान शेष नाग के मस्तक पर रहे तब तक तुम्हारा पति जीवित रहे, तुम्हारा अहिवात अचल रहे। पार्वती सम पति प्रिय हो, तुम्हारा पति तुमसे वैसा प्यार करे जैसे भगवान शिव पार्वती जी से करते। अच्छा, यहाँ प्रश्न होता है कि ये क्यों नहीं कह सके कि जैसे भगवान विष्णु प्रेम करते हैं लक्ष्मी जी से, वैसा तुम्हारा पति प्रेम करे। क्या हर्ज था ये कहने में हर्ज ये है कि इसमें जो पति है तो लगभग शिव जी के ही समान वेश में हो गया, तो और भगवान विष्णु तो पूरी ठाट बाट से हैं, वैकुंठ के राजा, और ये वन में जा रहे हैं, ये लड़का वन में जा रहा है, उसे मुनि का वेश पहना है, जटा धारण किया, तो सहज याद हो रहा है कि ये शिव जी जैसा है। शिव जी ऐसे ही हैं, कुछ संग्रह नहीं करते हैं, अपने भिखारी भोला नका के दानी, दूसरों को लुटा दिए, सोने की नगर दे दिए, क्या क्या, लेकिन अपने आज तक एक घर नहीं बांधे। शिव जी का अपना कोई फ्लैट नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, जबकि है विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर है, और एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, आज तक घर नहीं बनाए, और उनकी पत्नी भी संतुष्ट रहती है, चलो जैसा भी है। कभी पार्वती जी ने आग्रह नहीं किया तो हमको ये चाहिए वो चाहिए, जबकि वे सबसे धनी व्यक्ति की पुत्री हैं, रत्नों की खान हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन अपने पति से कभी आग्रह नहीं किए कि आप भी कुछ घर बांधिए सब चीजें, वो भी पेड़ के नीचे रहते हैं, लेकिन वहां एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आता है, एक पक्षी भी वहां बैठता नहीं है, बीत नहीं करता है। भगवान शिव के विश्राम का जो वट है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, बहुत सुखद है। एक बहुत भारी पंडाल की तरह हो रहता है छाया, शीतल छाया, एसी बनाना नहीं पड़ता है, और वहीं पर नारद जी, सनकादिक और विश्व के समस्त ऋषि मुनि आते रहते हैं, और भगवान शिव केवल कीर्तन और कथा बस दो ही करते रहते हैं, और उनको कोई ऑफिस अटेंड नहीं करना है कि इधर जाओ ये करो ये ड्यूटी ये ड्यूटी। कभी कभी इधर उधर चलते हैं तो पार्वती जी को साथ में लेकर चलते हैं, जैसे अगस्त जिसे कथा सुनने गए मलय पर्वत पर, तो कहीं कथा कहते हैं, कहीं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, बस भगवान की चर्चा के अलावा शिव जी का काम दूसरा नहीं है। पर ये मनुष्य तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है नाम जपने की, फुर्सत नहीं है, लगता यही संसार थामे हुए है, तो संसार का मालिक इतना निश्चिंत होकर भजन करता है, हमेशा राम राम रखते रहते हैं, उनके पांच मुख हैं, एक मुख से भगवान शिव 24 घंटा अखंड कीर्तन करते हैं, राम 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 हमेशा रखते रहते हैं, और दूसरे मुख से कथा कहते हैं, ऐसे भी उनकी सामर्थ्य है, तो सदा भजन में रहते हैं। इनका स्वभाव है ये दूसरों को देते रहते हैं, दूसरा कोई रो दे दुखी हो जाए कि हमको चाहिए तो भगवान शिव दे देते हैं, और अपने लिए कपड़ा तो कभी टाट का भी नहीं पहने, एक टाट का कपड़ा जैसे जाओ जय गुरुदेव वाले पहनते हैं वो भी नहीं पहने कभी, और रेशमी वस्त्र पहनने की बात तो बहुत दूर की है, अनादिकाल से आज तक एक कौपीन भी अच्छा से नहीं पहने शिव जी, कहीं बाघांबर लपेट लेते हैं तो मृगसर लपेट लेते हैं, ऐसे स्वाभाविक मृत्यु से मरा हुआ बाघ लपेट, अगर इस तरह से आदमी शिव जी के समान सीखे तो जीवन की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ये कोई आदर्श नहीं है, खास करके गृहस्थों के लिए शिव जी कोई आदर्श गृहस्थ नहीं है, आदर्श गृहस्थ भगवान विष्णु है। गृहस्थ के यहां धन धान्य होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, अतिथियों की सेवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, शिव जी जैसा फक्कड़ हो गए तब तो, लेकिन फिर भी शिव जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वही अंश कह रहे हैं पार्वती संग पति प्रिय हो, पार्वती जैसी प्यारी है अपने पति की शिव जी की, वैसे तुम हमेशा प्यारी रहो, और देवी ने हम पर छाड़ छो हम पर कृपा मत छोड़ना, पुनिपुनि विनय करिए करजोर, हम हाथ जोड़ करके तुमसे विनय करती हूँ कि यदि इस मार्ग से लौटना हो जाऊं यही मार्ग फिरिए बहोरी, तो दर्शन देव जान निज दासी लखी सिय सब प्रेम किया, तो आप दर्शन देना इसी रास्ते से लौटना, यदि इस रास्ते से लौटना हो तो हमको दर्शन देना, इस गांव का नाम लिख लो। कुछ लड़कियां गांव का नाम लिख करके देती हैं और अपने नाम भी लिख करके सीता जी को देती, याना तो पूछना हमारा ये नाम है नाम इसी गांव में रहें, कम से कम जो उस गांव में विवाहित हुई थी वो लोग तो रहे नहीं, कुमारी लड़कियां हो सकता है विवाह होने के बाद दूसरे गांव में चले जाए, तो सीता जी से इस तरह से बात कर रही है प्रैक्टिकल, और तुम भी अपना स्थायी एड्रेस लिखा दो, सीता जी ने भी कहा होगा अयोध्या वहां जो भी घर घर का नंबर रहा होगा, उनको तो सबको सब लोग जानते हैं, इस तरह से प्रेम के डोरी में बांध करके सबको भगवान वन में जा रहे हैं। अभी वन गमन के इस दृश्य का वर्णन आगे भी होगा, हम कल भगवान को चित्रकूट पहुंचा करके ही मानेंगे। चित्रकूट में वे आनंद से रहने लगेंगे और फिर इधर दशरथ जी का मरण नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। भगवान सुख से रहने लगे चित्रकूट में, खग मृग वृंद सभी सुखी हो गए, देवता लोग भी सुखी हो गए। भगवान का चित्रकूट में निवास, बहुत सुंदर लीला है उनकी। 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे और 2 वर्ष उसके बाद साउथ इंडिया में गए घूमे। 2 वर्ष के अंदर सीता हरण हुआ था, लास्ट 2 वर्ष में। कई भगवान की लीलाएं हैं, कहने को तो बहुत जी करता है, और यदि सालों भर भगवान की लीला कही जाए तब भी शेष नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें से कुछ को छोड़ छाड़ कर इधर उधर भाग करके मैं कहा। लोग होता है कहने का, लेकिन समय कम होता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। तो हम यहाँ पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं, और आप सभी को भगवान श्री राम के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। आप भी भगवान के आनंद से आनंदित होइए, भगवान आपको कृपा करें, सुखी रहें सब तरह से। हरे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीपति।